राधे जय जय मारा वदाय दे दमदार राते वडाना वैसे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश दमदार राते वडाना वैसे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश दमदार राते वडाना वैसे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश Rati Vardana Veshe Hari Nishkuta Vrinda Vipine O Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate Vishwanu Dari Navasashi Leke Vishwanu Dari Navasashi Leke Vishwanu Dari Navasashi Leke Lalita Saki Vunaramita Vishake Lalita Saki Gunaramita Vishake O Radhe Jaya Jaya O Madhava Dayate Radhe Jaya Jaya O Madhava Dayate Kurunam kurumai karuna barite Kurunam kurumai karuna barite Kurunam kurumai karuna barite Kurunam kurumai karuna barite Sanaka sanatan vrinita chirete Sanaka sanatan vrinita Sanata sanatana varnita charite Varite O Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate Gokula Tarune Mandala Mahite Gokula Tarune Mandala Mahite O Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate O Radha, O beloved of Madhava.
Hey Radha.
Beloved of Madhava.
Madhav ki priya.
O you who are worshipped by all the young girls of Gokula.
Gokul ki sab taruniyon dwara vandit devi.
All glories unto you. All glories unto you.
Aapki jai ho, aapki jai ho.
So, of course, Radharani is worshipped by all the gopis.
Aur nischit roop se Shrimati Radharani pratyek gopi dwara aaradhya hai.
She is the head of the gopis.
Sabhi gopiyon ke netritv karte hain.
In fact, she is in charge of all of the devotees.
Yahan tak ki wo sabhi bhakton ka netritv karte hain.
Including little devotees like us.
Aur jisme chote chote bhakt hum jaise bhi sammilit hain.
So before we go any further, let's recite the Guru Parampara Pranams.
So इससे पहले हम आगे बढ़ें हम गुरु परंपरा प्रणाम उच्चारण करेंगे
विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय बुद्धवे श्रीमाते बाकि वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी देवी शेष निवारे पास्कर ओम अग्निनाथ
देवेरांधस्य धनंजन शलाकया
चक्षुर्मितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः
Chaitanya Manovistha
Vidam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gura Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Kukanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripasindhu Bhayevacha Patitanam Apavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
So the Bible says that man is created in the image of God
बाइबल में कहा गया है कि जो मन मनुष्य की उत्पत्ति हुई है वो भगवान की रिफ्लेक्ट भगवान की इमेज के समान हुई है
They never stop to think what that means
तो लोग कभी रुकते नहीं हैं सोचने के लिए इसका क्या अर्थ है
He has two arms two legs a lotus mouth lotus eyes
दो हाथ दो पैर नयन मुख
lotus feet
चरण कमल
everything's lotus About Krishna.
Krishna ke ang ki tulna, har ang ki tulna kamal se ki gayi hai.
But Krishna has never stopped to think, well, if man is created in the image of God, in whose image is woman created? Duh.
To koi ye nahi rukta sochne ke liye ki agar man.
I cannot answer that question.
If man is created in the image of God, then in whose image human is created?
Only Gaudiya Vaishnavas can answer that question.
कि फिर भगवान की जो उत्पत्ति हुई है वो किसके इमेज के में हुई है? तो सिर्फ गौड़िया वैष्णव इसका उत्तर दे सकते हैं.
There's no difference between Radha and Krishna.
Sorry?
There's no difference between Radha and Krishna.
राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है.
The Supreme Personality of Godhead is one.
परम पुरुषोत्तम भगवान एक हैं.
But he is divided in two.
परंतु वो अपने आप को दो में विभाजित करते हैं.
Radha and Krishna.
राधा और कृष्ण.
So Srimati Radharani is the supreme goddess.
श्रीमती राधा.
She's also the supreme personality of Godhead in female form.
श्रीमती राधा रानी जो परम पुरुषोत्तम हैं उनका अगर स्त्री स्वरूप देखा जाए वो श्रीमती राधा रानी हैं.
जय श्री राधे.
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 So, this next verse from this stava says, "You who just dress yourself, this is Radharani, of course. You just dress yourself in such a way as to increase." Lord Damodar's love and attachment for you.
तो जब हमने भजन गाया उसका अगला जो पैराग्राफ है उसका अर्थ ये है आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाला वेश धारण करती हैं.
In this world, it's a multi-trillion-dollar business.
भौतिक जगत में ये $1 trillion business है.
Women's fashions.
Woman fashion.
Women like to dress themselves to please the men.
कि जो स्त्री हैं किस प्रकार से अपने आप को सजाती हैं कि जिससे पुरुष का ध्यान आकर्षित हो सके
Where from comes this desire?
तो ये इच्छा कहां से आती है
Here we see that it comes from the supreme personality of goddess.
तो अब यहां पर हम देखते हैं कि परम पुरुष तो नहीं कहेंगे परम स्त्रीत्व भगवान के
She wants to dress to please Lord Damodar.
वो वेश धारण करती है भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने के लिए
to increase his love and attachment for her.
उनके प्रति प्रेम और आसक्ति को बढ़ाने के लिए
So that's what's going on in this material world, perverted reflection.
तो भौतिक जगत में ये हो रहा है, कैसे विकृत परछाई है?
The key word is perverted.
और इसमें ध्यान देने वाला शब्द है विकृत.
The example is the spiritual world is like a banyan tree.
आध्यात्मिक जगत एक वृक्ष के समान है.
And the material world is like a reflection in a pond or lake.
और भौतिक जगत अगर उसी वृक्ष की परछाई हो तालाब में या नदी में तो भौतिक जगत उस परछाई के
समान है
और अगर कोई हवा बहती है तो पानी में तरंगे होती हैं
so the reflection is there, but it's perverted.
तो छाया है परंतु विकृत है
so the desires that people have in this world, they're coming from the Supreme Lord.
तो जितनी भी इच्छाएं हैं लोगों की इस भौतिक जगत में वो भगवान से ही आ रही हैं
so men are perfect parts and parcels of Krishna, women are perfect parts and parcels of Radharani.
जो मनुष्य हैं बहुत ही अच्छे पार्ट एंड पार्सल हैं भगवान कृष्ण के और जितनी स्त्रियां हैं वो पार्ट एंड पार्सल हैं राधा रानी के
ओ क्वीन ऑफ लॉर्ड हरिस प्लेजर ग्रोव वृंदावन
भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हैं
Which is the pleasure grove of Sri Hari.
जो हरि को सुख देती हैं।
O new moon, who has arisen from the ocean of King Vrishabhanu.
महाराज ऋषभानु रूपी सागर से उदित आप नव चंद्र स्वरूपा हैं।
Of course, in a few minutes we'll find out there's more to the story than King Vrishabhanu.
तो यहाँ पर देखते हैं वो महाराज ऋषभानु।
We'll find out the shocking truth.
तो यहाँ पर जो शक्ति का सत्य है उसकी स्थापना की गई है
That is not very much discussed by the devotees.
जिसकी चर्चा अधिकतर भक्त नहीं करते
The shocking truth is that King Vrishabhanu is the stepfather.
तो चौंका देने वाला सत्य ये है कि जो ऋषभानु है वो स्टेप फादर है स्टेप फादर हिंदी में
not the real father of Srimati Radharani.
वो असली पिता नहीं है राधा रानी के
we'll discuss that in a few minutes.
तो अभी हम इसकी कुछ मिनट में चर्चा करेंगे
so, but she's known as the daughter of King Vrishabhanu.
परंतु उनको जाना चाहता है ऋषभानु की पुत्री के रूप में
ओ फ्रेंड ऑफ ललिता
आप ललिता की सखी हैं
यू हू मेक विशाखा loyal to you due to your wonderful qualities of friendliness
aap bahut adbhut gunon se vishakha ko apne vashibhut karti hain
of course lalita and vishakha are her primary sakhi associates confidential
lalita aur vishakha unki mukhya khuyatam sakhi hain
so they're also attracted by her wonderful qualities of friendliness kindness and faithfulness to krishna
to ye bhi rishimati radha rani se aakarshit hoti hain unke sauhrid karunya krishna anukulya jaise gunon se
oh you who are filled with compassion
aap karuna se bhari hui hain
so please remember shri krishna chaitanya shri krishna chaitanya
shri krishna chaitanya
radha krishna nahi anya
radha krishna nahi
Shri Krishna Chaitanya.
Shri Krishna Chaitanya.
Radha Krishna nahi anya.
Radha Krishna nahi anya.
Krishna is blackish in complexion.
जब भगवान कृष्ण हैं उनका वर्ण श्याम वर्ण है.
But he is descended as Mahaprabhu in a golden form.
परंतु अवतरित हुए महाप्रभु के रूप में एक पिघले हुए सोने के समान उनकी कांति है.
Where from is coming this golden complexion of Mahaprabhu?
तो ये जो स्वर्ण कांति है महाप्रभु की कहाँ से आ रही है?
It is the effulgence of Srimati Radharani.
ये श्रीमती राधा रानी का तेज है.
And here the quality of compassion is mentioned by.
और यहाँ पर जो करुणा का गुण है रूप गोस्वामी के द्वारा.
So where from is coming the famous compassion of Mahaprabhu?
तो महाप्रभु का जो इतना प्रसिद्ध करुणा का गुण है वो कहाँ से आ रहा है?
Is it coming from Krishna?
क्या वो कृष्ण से आ रहा है?
Sort of.
कुछ कुछ.
It's actually because Shastra says that. The Supreme Personality of Godhead, Mahaprabhu, has assumed the form, has assumed the color, and the compassion of Srimati Radharani.
क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी के देह की कांति और उनके करुणा को स्वीकार करके अवतरित हुए हैं.
So here Srila Rupa Goswami is acknowledging the extraordinary loving mercy and compassion of Srimati Radharani
Srila Rupa Goswami yahan par Srimati Radharani ke jo adbhut karuna और प्रेम है उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं.
The next statement is very interesting.
जो अगला वाक्य है बहुत रुचिकर है.
O you whose divine characteristics are described by the great sages Seneca and Senatan.
आपका दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है.
They are Mahajan.
ये महाजन है.
One of the greatest, 12 greatest authorities on the science of Krishna consciousness.
Krishna Bhavanamrit Vigyan pe sabse bade jo adhikari mein se ek hain.
But actually they are in Shantaras, neutrality.
Vastvikta mein wo Shantaras mein hain.
They are not interested in becoming eternal residents of Braj. Wo, it's not their flavor.
Wo shashwat Vrajvasi banne mein ruchi nahi rakhte.
Yet, Srila Rupa Goswami is saying that they are some of the greatest authorities on Radha and Krishna.
फिर भी Srila Rupa Goswami यहाँ पर कह रहे हैं कि राधा कृष्ण विषय में एक बहुत महान अधिकारी हैं, प्रमाणित.
Then he concludes by saying, "O most merciful Radha, please be merciful to me."
तो वो अंत में इस प्रकार से निष्कर्ष लिखते हैं कि हे राधे मुझ पर करुणा करो.
Talk about the actual father of Srimati Radharani.
तो अब हम चर्चा करेंगे श्रीमती राधा रानी के जो वास्तविक पिता हैं उनके बारे में.
There are different narrations about the appearance of Srimati Radharani in this world.
श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य की अलग-अलग कथाएं हैं इस भौतिक जगत में.
But we'll start by the narration given by Srila Rupa Goswami and Lalita Madhava.
तो हम शुरुआत करेंगे जो Srila Rupa Goswami ने ललित माधव में वर्णन किया है.
And it repeats what is explained by Purnamasi Devi to Gargi, the daughter of Garga Muni.
तो पूर्णमासी गर्ग मुनि की पुत्री गर्गा देवी को ये प्रसंग बता रहे हैं जिसको Srila Rupa Goswami ने वर्णन किया है.
Of course, Purnamasi is no ordinary mata.
तो पूर्णमासी कोई सामान्य माता नहीं है.
The details of the appearance of Radharika were known to Purnamasi Devi because she arranges all the pastimes of the Lord.
तो श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य की जितनी भी विस्तृत जानकारी है पूर्णमासी को पता थी क्योंकि वो सभी भगवान की लीलाओं का प्रबंध करती हैं.
She is Yogamaya.
वो योगमाया है.
Yogamaya appears in the form of these elderly Vaishnavis. It's a great mystery.
तो योगमाया इस संसार में प्रकट होती हैं जो बड़े वैष्णवी के रूप में. ये बहुत रहस्य की बात है.
They're not ordinary Indian matas for even a split moment.
तो वो कोई साधारण भारतीय माता जैसी नहीं है.
So this is confidential, Rajavidya, Rajagui. That's why we don't hear much about it.
तो ये राजविद्या है, बहुत ही घुयतम है, इसके बारे में हम अधिकतर श्रवण नहीं करते.
She shared this confidential information only with Mother Yashoda and Rohini Devi. See, very, very hush-hush, very confidential.
तो वो माता यशोदा और माता रोहिणी से कोई बहुत कम लोगों को से इनकी जानकारी है. तो आप देख सकते हैं बहुत ही घुयतम विषय है.
There is one mountain range in India called Vindhya.
तो एक पहाड़ की चोटी है भारत में जिसका नाम है विद्या.
Located in Madhya Pradesh.
मध्य प्रदेश में स्थापित है.
That's across, I guess, it's a plain or valley across from the Himalayas southwest.
तो हिमालय दक्षिण पश्चिम दक्षिणी दिशा में वहाँ पर उसकी का extension में है.
There have been a lot of pastimes of the associates of Lord have taken place in the caves of this mountain.
तो भगवान के पार्षदों के द्वारा वहाँ की गुफाओं में अनेक लीलाएं की गई हैं.
But very few know about its confidential history.
तो ये बहुत ही घुयतम इतिहास है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है.
Actually, Mount Vindhya used to be huge, massive, high. See, mountains are alive. Try to understand. Maybe not all mountains, but prominent mountains like the Himalayas and Vindhya—they're alive. They're persons.
तो जो ये विद्या पर्वत है, ये पहले बहुत बड़ा था. और आपको जानना चाहिए चाहे हर पर्वत नहीं परंतु हिमालय पर्वत जैसे और ये विद्या पर्वत जैसे ये जीवित व्यक्ति हैं.
It'll take the scientists about 200 years to accept this.
तो वैज्ञानिकों को कम से कम 200 साल लग जाएंगे और इस बात को स्वीकार करने में कि जो पर्वत है जीवित व्यक्ति हैं.
by the time science accepts this as truth, we'll be all dead and gone and moved on to Goloka Vrindavan.
और जब समय आएगा जब विज्ञान इस सत्य को पहचानेगा इसको स्वीकार करेगा तब तक हम जा चुके होंगे गोलोक
वृंदावन
और अगर आप सोचें तो सभी पर्वत एक मनुष्य एक व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हैं
like volcano eruptions.
जैसे कि ज्वालामुखी फटना
They're like Mother Earth having a fit.
ये उस प्रकार से है जैसे पृथ्वी माता को दौरा पड़ रहा है
Boom. She's very upset about the weight of the sinful people on this world.
तो जब पृथ्वी माता बहुत दुखी और नाराज होती है जो उनके ऊपर जितने पाप के बोझे से
Mother Earth is moody and temperamental. I don't have time to explain the pastime of Mother Earth and Prithvi Maharaj.
तो पृथ्वी माता बहुत मूडी है और नखरे करने वाली हैं तो मेरे पास अभी समय नहीं है कि पृथ्वी महाराज और पृथ्वी माता का मैं लीला वर्णन कर
सकूं
और कभी कभार पृथ्वी माता बहुत मूडी हो सकती हैं
I'll just say quickly that after the great demon
Vena
was killed by the brahmanas
Vena तो जब वेन का वध कर दिया गया था ब्राह्मणों के मंत्रों के द्वारा
He had stopped all jagnas and all sacrifices and he was persecuting the Brahmins.
तो सभी ब्राह्मणों की हत्या कर रहा था सभी प्रकार के यज्ञ उसने रुकवा दिए थे
So Mother Earth was pouting. King, the first thing Maharaj Pritha did was restart the jagnas.
तो जब पृथु महाराज आए तो सबसे पहला कार्य उन्होंने किया यज्ञ को दोबारा शुरू करवाया
So that means that Mother Earth was getting all of her portion of all the jagnas.
उसका अर्थ है कि पृथ्वी माता को यज्ञ का भाग हिस्सा प्राप्त हो रहा था परंतु किसी भी भोजन उत्पत्ति के लिए मना कर रही थी और उनका दृष्टिकोण इस प्रकार से था कि वो बिल्कुल ऐसे बैठी थी कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा अभी
It's a long story. But Prithvi Maharaj chastised her. Come on, you have to. You're getting your fair share of the jagnas now.
तो ये लंबी कहानी है परंतु पृथु महाराज बहुत ही दृढ़ थे उन्होंने कहा आपको यज्ञ का जो फल है प्राप्त हो रहा है तो आपको देना होगा
So she said, no, I won't.
तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी
He said, if you don't produce, now you're getting your jagna. If you don't produce, I will kill you.
तो उन्होंने कहा अब आपको यज्ञ हो रहे हैं सबका फल मिल रहा है तो उन्होंने कहा अगर आप नहीं भोजन उत्पत्ति करोगे तो मैं आपका वध कर दूंगा
Her first argument is, no, you can't kill me. I'm a woman. It's forbidden in the Shastra.
तो उनका पहला तर्क था कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र में माता की वध के मना किया गया है
Prithvi Maharaj says, I don't care.
Prithvi Maharaj ने कहा मैं परवाह नहीं करता
Then she says, but I'm the earth. You can't kill the earth.
तो उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी हूँ तुम पृथ्वी का वध नहीं कर सकते
If you kill the earth, it will disintegrate just into dust.
अगर आप पृथ्वी का ही वध कर दोगे तो पृथ्वी का क्या होगा वो ढह जाएगी
Then he says, well, that doesn't matter.
तो उन्होंने कहा कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता
I'll become the earth. And I will support all the living entities.
तो उन्होंने कहा मैं पृथ्वी का रूप धारण कर लूंगा और मैं सभी जीवात्माओं का पोषण करूंगा
my mystic power.
अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा
Try to understand, he is jiva, like Prabhupada is jiva.
तो समझने का प्रयास कीजिए पृथु महाराज जीवा थे जैसे शिला प्रभुपाद जीव तत्व है
he is not Vishnu tattva.
वो विष्णु तत्व नहीं है
But he had the power to do that.
परंतु उनके पास इतनी शक्ति है ऐसा करने के लिए
Anyways, so now The mountain Vidya had grown too tall.
तो जो विद्या पर्वत था वो बहुत ऊंचा था
And it's described in the Mahabharata that it was so tall, he was so tall, he was eclipsing the sun, interfering with the path of the sun.
तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि वो उनकी ऊंचाई इतनी थी कि वह सूर्य का जो रोशनी थी उसके बीच में खड़ा हुआ था
So the great sage powerful sage and powerful yogi Agastya Muni he became disturbed by this
तो अगस्त्य मुनि जो बहुत ही शक्तिशाली महान ऋषि हैं तो इस चीज को देख के वो disturb हो गए
He's certainly one of the most powerful yogis and sadhus in the entire universe.
अगस्त मुनि की गणना पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे शक्तिशाली योगी हैं या साधु हैं उनमें से गिनती होती है.
Nobody would dare deny his order.
और कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे.
So he ordered Mount Vindhya, bow down and don't get up until I come back.
तो उन्होंने जो विद्या पर्वत था उनको निर्देश दिया कि तुम झुक जाओ और तब तक खड़े मत होना जब तक मैं वापस ना हूं.
But he never came back.
परंतु वो कभी वापस नहीं आए.
Therefore, Mount Vindhya is bowed down. We can't see it with our fleshy eyeball, but the conclusion is Mount Vindhya is bowed down because he can't get up because he can't disobey Agastya Muni.
तो जो विद्या पर्वत है वो तब से लेकर आज तक उस प्रणाम मुद्रा में है. हम हो सकता है अपने चरम रूपी आंखों से इसको साक्षात्कार ना कर पाए परंतु शास्त्रों के द्वारा यही वर्णित है.
So there's a long history.
तो ये लंबा इतिहास है.
Mount Vindhya was envious of Himalayas because Himalaya, remember, Himalaya is also personality.
तो ये जो विद्या पर्वत है ये द्वेष करता था हिमालय पर्वत से. तो हिमालय पर्वत जैसे मैंने बताया वो भी एक व्यक्ति है.
Very unusual circumstance.
तो बहुत ही विचित्र परिस्थिति है.
He was envious of Himalayas because Himalaya has the daughter Parvati or Himavari.
तो इसलिए द्वेष करता था क्योंकि उनके हिमालय की पुत्री थी पार्वती हिमावती.
And she is the consort of Lord Shiva. Lord Shiva is undefeatable.
तो भगवान शिव की भारिया है और भगवान शिव को कोई पराजित नहीं कर सकता.
So Mount Vindhya was envious for these reasons. Usually kings and great personalities they desire a son, but Mount Vindhya did not want a son. He wanted a daughter so he could compete. He wanted a daughter who would have a husband as powerful, more powerful than Lord Shiva. Not possible.
तो असाधारणता लोग पुत्र की कामना करते हैं बड़े-बड़े राजा उनकी परंपरा आगे चले परंतु यहाँ विद्या पर्वत की इच्छा थी कि उनकी पुत्री हो जिससे वो हिमालय पर्वत का साथ स्पृधा कर सके और वो चाहते थे अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से करे जो भगवान शिव से भी ज्यादा शक्तिशाली हो. तो ये तो लगभग असंभव बात है.
So Mount Vindhya wanted a daughter who would have a husband or consort who could defeat Mahadev in fighting.
तो वो ऐसे पुत्री चाहते थे जिनके 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 पति महादेव को युद्ध में पराजित कर सके.
Unthinkable, that's what he wanted.
तो असोचनीय है ये बिल्कुल कल्पना से परे है परंतु यही उनकी इच्छा थी.
And he would thus attain the position of emperor of the universe.
Sorry, Maharaj.
He would be the position of emperor of the universe.
और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड के राजा की गद्दी को वो प्राप्त कर लेंगे.
So he performed severe austerities to please Lord Brahma.
तो उन्होंने बहुत कठोर तप किया ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए.
After some time, Lord Brahma appeared before him.
और कुछ समय बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए.
So what kind of boon do you want?
किस प्रकार का वर आप चाहते हैं?
So Vindhya replied that he wanted to have a daughter who carried the blessings of whomever he married could defeat Mahadev in battle.
तो वो चाहते थे कि मैं ऐसी पुत्री चाहता हूँ जिसके पास ऐसा आशीर्वाद हो जो भी उनका पति हो वो महादेव को युद्ध में पराजित कर सके.
Unheard of, but this is what he wanted.
तो ऐसे पहले कभी नहीं सुना गया था परंतु ये उसकी इच्छा थी.
So Lord Brahma was very pleased with Mount Vindhya because of his austerities.
तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न थे पर्वत से उनकी तपस्याओं के कारण.
So he immediately said, "Tathastu, so be it."
तो इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, "तथास्तु, ऐसा ही हो."
So Vindhya was very happy to receive the boon from Lord Brahma.
तो विद्या पर्वत बहुत प्रसन्न थे ऐसा वर प्राप्त करके ब्रह्मा जी से.
But after offering the boon, Lord Brahma was thinking, "Who is the person that can defeat Mahadev to battle? It's not possible."
तो ब्रह्मा जी ने वर तो दे दिया. परंतु उसके बाद वो सोच रहे थे कि ऐसा कौन है जो महादेव को पराजित कर देगा युद्ध में.
He was worried now about the boon he had granted.
तो अब वो चिंतित थे अपने वर को लेके.
This was become a headache for him.
तो उनके लिए सिरदर्द बनता जा रहा था.
Then he realized that Lord Krishna, his pastimes was going to take place on the earth.
तब उनको साक्षात्कार हुआ कि भगवान कृष्ण के लीलाएं पृथ्वी पर होने वाली हैं।
की जाए,
की जाए,
की जाए, गोविंद की जाए,
गोविंद की जाए,
राधा गोविंद की जाए,
राधा गोविंद की जाए।
So he realized that only Krishna can defeat Mahadev in battle.
तो उनको पता था कि सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण महादेव को पराजित कर सकते हैं युद्ध में।
Brahma thought, Lord Krishna's eternal consort is Srimati Radharani.
तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कृष्ण की शाश्वत शक्ति है श्रीमती राधा रानी।
Now here we have the bottom line now.
तो अब हमारे पास कुछ आधार है।
Vindhya was thinking, if I can get Srimati Radharani, or Lord Brahma was thinking, if I can give Srimati Radharani to Vindhya Parvata as his daughter, only then can my boon be fulfilled.
तो अब ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि अगर मैं विद्या पर्वत को श्रीमती राधा रानी दे सकूं उनके पुत्री के रूप में तभी मेरा वर पूरा हो सकता है।
But how can this happen?
परंतु ऐसा कैसे संभव है?
Because श्रीमती कीर्तिता, she is the eternal mother of Radharani.
क्योंकि श्रीमती कीर्तिका ये शाश्वत माता है राधा रानी की।
So then he began worrying about his boon. Lord Brahma started worrying about his boon.
तो ब्रह्मा जी को बहुत चिंता हो गई अपने वर को लेके।
He himself underwent severe austerities to please Srimati Radharani. की जाए।
तो ब्रह्मा जी खुद तपस्या में लग गए श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए।
हरि बोल। So the Almighty Lord Brahma is doing austerities to please Radharani.
तो वो ब्रह्मांड के अधिदाता उनके सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ब्रह्मा जी अब तपस्या कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के
लिए।
कौन कौन इसको स्वीकार करेगा? कौन इस पे विश्वास करेगा?
So when she was pleased with him, he requested her to please appear as a daughter of Vindhya Parvata, the mountain.
तो जब श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हुई उनके तपस्या से, तब ब्रह्मा जी ने वर मांगा कि आप कृपया प्रकट हुए धरातल पर विद्या पर्वत की पुत्री के रूप में।
Radharani agreed.
श्रीमती राधा रानी मान गई
to have Mount Vindhya as her father.
कि वो पर्वत विद्या को अपने पिता के रूप में स्वीकार करने के लिए।
And Yogamaya arranged for two girls, Radharani and Chandabali, who were already in the wombs of the wives of Vrishabhanu.
तो योगमाया ने प्रबंध किया कि दो कन्या श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली
these pastimes get
जिससे ये लीलाएं संपन्न हो सके।
वृषभानु और चंद्रभानु।
वृषभानु और चंद्रभानु।
So this happens several times in Krishna Lila, the transferring from one womb to another.
तो कृष्ण लीला में कई बार ये हुआ, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरण।
So they put them both in the womb. He put both in the womb. She put them both in the womb of the wife of Vindhya Parvata.
तो विद्या पर्वत की जो पत्नी थी उनके गर्भ में दोनों कन्याओं को प्रवेश हुआ।
So Srimati Radharani and her arch rival Chandabali, their sisters.
तो श्रीमती राधा रानी और उनकी जो सबसे बड़ी विरोधी हैं चंद्रावली, ये दोनों आपस में बहनें हैं।
We don't find much emphasis on Chandabali in our line.
तो चंद्रावली पे हम ज्यादा एम्फेसिस जोर कहीं नहीं मिलता।
The Goswami is right about Chandrabali a little bit, but not much.
गोस्वामियों ने अपने ग्रंथ में चंद्रावली के बारे में कुछ वर्णन दिया है, परंतु ज्यादा नहीं।
Why there's so little written about Chandrabali? She's a big personality.
तो चंद्रावली जो इतनी बड़ी व्यक्तित्व है, उनके बारे में इतना संक्षिप्त में क्यों दिया है गोस्वामियों ने अपने ग्रंथ में?
The answer is because Mahabhu is Radharani.
उत्तर है क्योंकि महाप्रभु श्रीमती राधा रानी हैं। हरि बोल।
हरि बोल।
हरि बोल।
महाप्रभु इज नॉट चंद्रावली।
महाप्रभु चंद्रावली नहीं है।
सो वी सी दैट द गोस्वामीज दे आर मंजरीज।
तब देखते हैं गोस्वामी अपने स्वरूप मंजरी हैं।
द मंजरीज आर कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स ऑफ राधिका। दे आर नॉट कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स ऑफ Chandabali. They're sold out to Radhika through and through.
तो जो मंजरी है वो सबसे घुयतम पार्षद है श्रीमती राधा रानी के। चंद्रावली के नहीं, वो श्रीमती राधा रानी के लिए सर्वस्व नौछावर, अपनी जान दे सकते हैं।
This is Rajavidya Rajaguhya, most confidential knowledge.
ये राजविद्या राजगुह्यम है, सबसे गुह्यतम ज्ञान।
They're massively sold out to Radhika. Why they be interested in Chandravali?
वो बिल्कुल बिकी हुई हैं श्रीमती राधा रानी के लिए कुछ भी करने के लिए।
She's mentioned briefly only by the Goswamis in their writings.
और चंद्रावली के बारे में बहुत संक्षिप्त में वर्णन है गोस्वामियों के द्वारा।
So, the wife of Vindhya had two daughters. They're very, very beautiful.
तो विद्या की जो पत्नी और उनकी जो दो पुत्री हैं, जो बहुत ही असीम उनका सौंदर्य है।
In the meantime, Lord Krishna appeared in Mathura.
और इतने में भगवान कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए।
So by the will of the Lord, Krishna was transferred to Mother Yashoda.
तो भगवान की इच्छा से वो माता यशोदा के पास गए।
So hearing that Devaki's eighth child had taken birth, immediately Kamsa came to the spot and snatched the girl from the lap of Devaki.
जैसे ही कंस को सूचना मिली कि देवकी का जो आठवां गर्भ है प्रकट हो चुका है, वो तुरंत भागते हुए आया उसको मारने के लिए, वध करने के लिए।
Of course, that was Subhadra Devi.
और वो सुभद्रा देवी थी।
So, as soon as Kamsa grabbed her, presuming that he could throw this infant down on the stones and kill her.
जैसे ही कंस ने उनको पकड़ा, ये सोचते हुए कि इनका पत्थर पर मार कर इनका हत्या कर देगा।
She assumed the form of Kali with all her weapons.
तो उन्होंने कली का रूप धारण किया, जिसमें उनके हर हाथ में अस्त्र शस्त्र थे।
अरे बाल।
So Kali is worshipped by hundreds of millions of people around the world.
तो जो कली है उनकी पूजा लाखों लोगों के द्वारा होती है पूरे विश्व भर में।
But they don't know that she is Subhadra.
परंतु उनको ये ज्ञात नहीं है कि वो वास्तविकता में सुभद्रा है।
Actually, we're worshiping Kali by worshiping Subhadra.
और अगर हम सुभद्रा की पूजा करते हैं तो कली का स्वतः ही उनकी हम पूजा करते हैं।
Bhadra is the name of Kali, one of the names of Kali.
भद्र कली काली का एक नाम है।
So we're worshiping Subhadra.
तो हम आराधना कर रहे हैं सुभद्रा की।
Su means auspicious.
सु का मतलब है शुभ।
So then Kamsa, she talks to Kamsa. One more thing you should know, tomorrow 8 Mahashakti greater and more attractive than me, Sakis, will take birth on the earth.
तो वो कंस को बताती हैं कि कल एक और कन्या का जन्म होगा जो मेरे से बड़ी है और शक्तिशाली है।
Their names are Radha, Chandrabali, Lalita, Vishakha.
तो वो और उनके सखियों का प्रकट्य होगा जिनका नाम है राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा,
पद्मा, सभ्या, श्यामला।
पद्मा, सभ्य, श्यामला।
These are the Ashtasakhis.
The Ashtasakhi.
And she says, two will be most famous for their great qualities.
तो उन्होंने कहा इनमें से दो मुख्य रूप से बहुत प्रसिद्ध होंगे अपने गुणों के द्वारा।
So then, Kamsa hearing this, he ordered Putana to kill all the recently born auspicious male children and abduct or kidnap all the newborn female children.
तो ये सुनकर कंस ने पूतना को निर्देश दिया कि जितने भी अभी नवजात शिशु हुए हैं उन सब का वध कर दो और जितनी भी कन्याएं उत्पन्न हुई हैं उनका अपहरण करके मेरे पास लाओ।
So on the order of King Kamsa, Putana found two most beautiful baby girls.
तो कंस का निर्देश प्राप्त करके पूतना को दो बहुत सुंदर कन्या प्राप्त कन्या को उन्होंने खोजा।
So Vindhya then arranged a samskara ceremony for these two girls.
उसके बाद विद्या ने संस्कार का प्रबंधन किया इन दो कन्याओं के लिए।
And a Brahmana priest who was performing jagna, he performed a particular mantra for killing witches because he could see that Putana was trying to kidnap the girls. He performed special jagna to kill witches, and Putana, she's a witch, was a witch, and so she became aware that this Brahmana, powerful Brahmana, was doing a yajna to kill her.
और उस संस्कार को संपन्न किया था ब्रह्मा जी ने जो उन्होंने यज्ञ किया था और उन्होंने एक ऐसा मंत्र पढ़ा क्योंकि वो जानते थे कि जो पूतना है नए कन्याओं का अपहरण करने का प्रयास कर रही है उनका वध करने का प्रयास कर रही है तो उन्होंने उनसे रक्षा के लिए एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया
so that was Vindhya ordered the Brahmins to chant mantras to kill Putana.
तो उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया पूतना का वध करने के लिए
See, the Brahmana chanted mantras so that Putana got weaker and weaker and weaker.
तो ब्राह्मणों के मंत्र के उच्चारण से जो पूतना का बल जाता गया और वो कमजोर पड़ती गई.
She wasn't able to hold the baby girls anymore. She was so weak.
तो इतनी कमजोर हो गई थी कि जो छोटी कन्याएं हैं, जो भी नवजात कन्याएं हैं, उनको पकड़ ही नहीं पा रही थी.
Into a river below. She threw one of the babies into the river below.
तो उन्होंने एक कन्या को पकड़कर नदी में फेंक दिया.
So it was the kingdom of Vidarbha.
तो विदर्भ का राज्य था.
Bhishmaka, the king of Vidarbha, found this girl and kept her with him until the age of 5.
What's the name of King Maharaj?
Bhishmaka. The king Bhishmaka, the king of
Vidarbha. Bhishmaka. जो विदर्भ के राजा थे उन्होंने 5 साल तक उनको वो कन्या प्राप्त हुई और उन्होंने 5 साल तक उनको रखा
So at that time Jambavan same Jambavan the great powerful gorilla he was residing in both in the caves of Mount Vindhya and the mountains by side that also in Govardhan
तो जो जांबवन है वही जो बड़ा गुरीला जांबवन वो विद्या पर्वत की गुफाओं में रहता था और गोवर्धन में भी रहता था
सो बाय द ऑर्डर ऑफ विंध्या जांबवन टुक चंद्रबाले अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन
तो राजा का निर्देश प्राप्त करके विद्या राजा का जांबवन ने चंद्रावली को उस परिस्थिति से बचाने के लिए कहीं और ले गया
So while Putana was flying in the sky, she became weaker, too weak to hold even the baby.
तो जो पूतना थी जो हवा में उड़ रही थी वो इतनी कमजोर पड़ गई थी कि वह जो दूसरी कन्या है उसको पकड़ ही नहीं पा रही थी
And upon reaching Braj, she fell to the ground.
और ब्रज पहुंचते ही वो जमीन पर गिर गई
At that time, Purnamasi Devi recovered that baby girl from Bhutana.
उस समय पूर्णमासी देवी ने उस कन्या को प्राप्त किया भूतना से
And gave the baby to Mukara. Mukara is a confederate association of the family of Srimati Radharani.
तो और उन्होंने उस कन्या को लेके मुखर को दिया जो श्रीमती राधा रानी के परिवार के बहुत गुह्यतम सदस्य हैं
So she told Mukara that this little girl is a daughter of your son-in-law Rishabhano so you should take care of her
son-in-law can you repeat last line
So from that day forward she became known as the daughter of King Rishabhano
तो उन्होंने वो कन्या को लेके ऋषभानु को दिया और तब से वो ऋषभानु की पुत्री के रूप में जाने लगे
There's much more to this story.
तो इस लीला में बहुत आगे और चर्चा है
Many poor past times you can find in this book by Purushottam Swami.
तो हिजलास भक्ति पुरुषोत्तम महाराज द्वारा ये पुस्तक है राधा रानी के ऊपर
It's a masterpiece. If anyone of you can Read this book, you should do it.
तो बहुत ही सुंदर पुस्तक है अगर आप में से किसी को मौका लगे तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए
So we'll stop there.
तो हम यहीं पर विराम देंगे
जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय श्रीमती राधारानी की जय
हरि बोल एज़ोलेंस भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज की जय
जय श्री राधे
जय श्री राधे
जय श्री राधे
जय श्री राधे
थैंक यू वेरी मच
तो अभी प्रवचन रहेगा हिज क्रिस मुरली कृष्ण प्रभु के द्वारा तो जब तक प्रभु जी आते हैं हम कीर्तन कर सकते हैं Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
हरे कृष्णा श्री श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की श्रीमती राधा रानी की ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरूभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। तो गौड़ीय वैष्णव के लिए आज ये बहुत ही शुभ दिन तिथि है। श्रीमती राधा रानी का आज प्राकट्य दिवस है। 15 दिन पहले हमने भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस श्री जन्माष्टमी महोत्सव मनाया था और आज भगवान की शाश्वत भार्या श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। भक्त लोग थोड़ा आगे आगे आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर ये श्लोक हमने बोर्ड पे लिखा नहीं है क्योंकि मेरी महाराज से बात हुई थी तो महाराज समय ज़्यादा लेने वाले थे। मेरे को लगा सवा नौ तक महाराज खत्म करेंगे तो नहीं तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। वह श्लोक है श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 30 श्लोक संख्या 28। ये वो श्लोक है जिसमें श्रीमती राधा रानी का नाम डायरेक्टली भी प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मेंशन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्न विहाय गोविन्दः प्रीतो यामन यद्रहः। तो ये प्रसंग है कि रास पंचाध्याय के अंदर कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं और रासलीला करते हुए भगवान अप्रकट हो जाते हैं सभी गोपियों से और एक गोपी के साथ में जा रहे होते हैं। तो सभी गोपियां जब देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके बीच में से क्या बोलेंगे डिसअपियर मतलब ओझल हो गए हैं तो उनको खोजने का वो बड़ा विरह महसूस करने लगी भगवान से और भगवान श्री कृष्ण को खोजने लगी वन के अंदर जंगल के अंदर। तो खोजते खोजते उन्होंने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा देखा तो और अब कैसे पहचान पाए भगवान के चरण कमल हैं वो, उसके दो कारण हैं कैसे पहचान पाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दोनों चरण में कुल मिला के 19 शुभ चिन्ह हैं। भगवान के राइट पैर में 11 और लेफ्ट पैर में 8 शुभ चिन्ह हैं। तो एक बात तो ये इससे वो पहचान पाए कि भगवान के चिन्ह हैं। दूसरा वो क्योंकि ब्रज के अंदर जहाँ कृष्ण चलते थे उनके उनके पद चिन्हों के ऊपर कोई चलता नहीं था क्या अभी है ना, तो इसीलिए वो भगवान के चरण कमल को चिन्हों को पहचान पाए कि भगवान कृष्ण इस रास्ते से गए हैं। और साथ में उन्होंने क्या देखा कि एक और गोपी के भी चरण चिन्ह हैं और वो कैसे पहचान पाई कि वो गोपी के चरण चिन्ह कैसे पहचान पाए कि किसके हैं, तो वो क्योंकि उनके चरण कमल में भी उसी प्रकार के 19 शुभ चिन्ह हैं, डिफरेंट हैं। राधा रानी के कृष्णा के राइट में 11 लेफ्ट में 8 और राधा रानी के वाइस वर्सा हैं 19 ही कुल मिला के और अलग अलग हैं, कुछ सेम है कुछ अलग है चिन्ह। मैं तैयारी कर नहीं पाया, एक जगह मैं सोच रहा था कि राधा रानी के फुटप्रिंट्स का एक बड़ा और सब शुभ चिन्हों के साथ में एक अच्छा पोस्टर लगाया जाए, मे भी उस जगह पे लगाते तो भक्त राधा रानी के चरण चिन्हों को मेडिटेट कर सकते थे। तो उन्होंने देखा कि वो उनके चरण कमल भी साथ के अंदर हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि हमें देखिए यहाँ कृष्ण के साथ साथ एक गोपी के भी चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के साथ जा रही होंगे। एक आश्चर्यजनक बात पूरे भागवतम के दशम स्कंद में हमें गोपियों के व्यवहार में देखने को मिलती है कि बहुत सारी जगह पे वह कृष्ण को कैसे पुकारती है, नंद महाराज के पुत्र। खासकर जब कात्यायनी का व्रत करती हैं गोपियाँ, तो जो श्लोक वो प्रत्येक दिन कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती थी, तो उसमें है नंद गोप सुतम देवी पति में, इस प्रकार से कि जो नंद गोप के पुत्र हैं वो आप हमें पति के रूप में दीजिए। अब साधारणतया वैदिक सभ्यता के अंदर और भारतीय सभ्यता के अंदर भी कोई स्त्री अपने ससुर का नाम नहीं लेती है ना, वो इस प्रकार से नाम नहीं लेती। तो यहाँ पे गोपियाँ ऐसा लगता है कि मतलब और विशेषकर गांव की स्त्रियाँ होंगी तो और भी ज़्यादा नहीं ब्रेक करती, लेकिन यहाँ पे लगता है कि गोपियों को इस प्रकार के रीति रिवाज का पालन नहीं कर रही वो। लेकिन वो इसीलिए इस बात को आचार्यगण कहते हैं कि स्पेसिफिकली वो नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप का नाम यूज कर रही है अपने ससुर का, मतलब जिस क्योंकि कृष्ण से शादी करना चाहती हैं वो, तो निश्चित रूप नंद महाराज उनके ससुर हुए तो वो इसीलिए उनका नाम ले रही हैं। कि मान लीजिए कृष्ण नाम के कोई और भी व्यक्ति हो गया तो कात्यायनी को कहीं मतलब कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो दे आर वेरी स्पेसिफिक नंद गोप, नंद महाराज नंद वो भी गोप, मतलब नंद भी हो सकता है कई हो, तो वो नंद जो कि ग्वाले हैं उनके पुत्र कृष्ण वो हमें पति के रूप में चाहिए। तो ऐसे ही वो यहाँ पर भी कस्याह पदानि चैतानि याता या नंद सुनुना, कि नंद के पुत्र के तो चरण चिन्ह हमको दिख रहे हैं लेकिन साथ साथ एक गोपी के भी चरण चिन्ह लग रहे हैं। तो सभी गोपियां और फिर सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के अंदर प्रथम बार और अंतिम बारी कह सकते हैं, मतलब इतना डायरेक्टली राधा रानी का नाम ले रहे हैं। अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अनयत रह। अन्य आराधितो अनय आराधितो गोपी अन्य आराधितो नूनम, नूनम मतलब निश्चय ही उन भगवान हरि की इस एक अन्य द्वारा गोपी ने बहुत अच्छे प्रकार से उनकी उपासना की रहेगी, पूजा की रहेगी, जिसके द्वारा भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हमको छोड़ दिया और उसके साथ एकांतवास करने के लिए चले गए। तो ऐसे गोपियां लगता है कि ईर्ष्यावश बोल रही होंगी, लेकिन वास्तविकता के अंदर ईर्ष्या नहीं है, उन्हें क्या है वो एक्सटेसी के अंदर बोल रही हैं। दे आर वेरी हैप्पी कि कृष्णा वो गोपी कितनी सौभाग्यशाली है जिसके द्वारा जिसके साथ में भगवान श्री कृष्ण अकेले में गए हैं। तो कुछ आज के दिन बहुत कंफ्यूजन रहता है, मैं तो पहली बार इस पर्व पे लेक्चर दे रहा हूँ, कल से मेरा बहुत पसीना निकल रहा था कि इस विषय पे श्रीमती राधारानी के विषय में हम क्या हमारे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्या हमारी विचारधारा होनी चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए, और विशेषकर भक्त समाज में किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। तो बहुत सारे प्रसंग पे चर्चा की जा सकती है श्रीमती राधा रानी के विशेष तत्व के विषय के अंदर, जिसको श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में अनेक जगह पे उद्धृत करते हैं, विशेषकर चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ के अंदर महाप्रभु के पोजीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए वो श्रीमती राधा रानी की पोजीशन को एस्टैब्लिश करते हैं। तो संक्षेप के अंदर मैंने अभी कुछ 5-7 दिन पहले एक क्लास दिया था, तो आप सबसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण भगवान है या नहीं है? कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण एक ग्वाले हैं जो भगवत्ता भी दिखा, भगवान का कैरेक्टरिस्टिक भी फुलफिल करते हैं, है ना। मतलब ऑफकोर्स कृष्ण भगवान है वो उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जो उनका मोस्ट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, पूर्णतम उनका परिचय कोई बताएगा कि कृष्ण कौन है, तो भगवान तो के साथ तो हम प्रेममय संबंध है, चलो ईश्वर है, बड़ा व्यक्ति है, राइट। लेकिन उनका जो असली परिचय है वह है कि वृंदावन में रहने वाले एक ग्वाल बाल हैं, गोचारण करने वाले हैं, जो कि नंद बाबा यशोदा माई के पुत्र हैं। और उनका पेशा क्या है? गाय चराना, राइट। और वैसे क्या करते हैं पूरा दिन? वो साधारण भाषा में बोला जाए तो मस्ती करते हैं और कुछ नहीं करते, बस, है ना। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, वैसे ही भगवान की परिभाषा के अनुसार उनके पास कोई कार्य करना नहीं होना चाहिए। अब श्रीमती राधा रानी कौन है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न कई बार आता है, और विशेषकर कई प्रकार के लोग ऐसा आक्षेप करते हैं कि श्रीमती राधा रानी का नाम तो देखिए वैदिक साहित्य के अंदर कहीं हमें डायरेक्ट ज़्यादा मिलता नहीं है, कृष्ण की जो पत्नियां हैं उनका तो नाम हमको मिलता है, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती, सत्या, नग्नजीति इत्यादि, लेकिन श्रीमती राधा रानी के विषय में तो हमें ज़्यादा प्राप्त नहीं होता। और दूसरी बात, तो क्या राधा रानी आप गौड़ीय वैष्णवों के द्वारा की गई कोई मनोकल्पना तो नहीं है, है कि नहीं, या कोई अपस्टार्ट तो नहीं है? अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक तथ्य भी है हमारे सामने। अब देखिए, जितने भी भारतवर्ष के अंदर प्राचीन कृष्ण के मंदिर हैं, चाहे वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ हो, चाहे नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी हों, चाहे वे गुरुवायूर हों, उडुपी कृष्ण हों, चाहे तिरुपति बालाजी हों, चाहे पंडरपुर में विट्ठल हों, चाहे द्वारका के अंदर रुक्मिणी द्वारकाधीश हों, जितने भी कृष्ण के मंदिर हैं, अब देख कहीं पर भी राधा रानी है नहीं। आप गए कहीं पर राधा रानी देखा आपने? किधर भी नहीं देखा होगा आपने राधा रानी, कि राधा रानी की कृष्ण के साथ पूजा हो रही है। तो अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ना वैदिक साहित्य में राधा रानी का नाम है और ना प्राचीन मंदिरों के अंदर हमें राधा रानी के उपासना देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने कोई कॉन्कॉक्टेड फिगर बना लिया है राधा रानी के रूप में? क्या कहना है आप सबका, ऐसा है या नहीं है? ऐसा कदाचित नहीं है, हमारे आचार्यगण बताते हैं। आप नहीं नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब आप सबको भी संदेह आ गया थोड़ा, तो है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, और है भी। कैसे नहीं है? क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने उनका नाम शास्त्रों में दिया गया है, डायरेक्टली बहुत जगह नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है उसका मैं कारण आपको बताता हूं थोड़ी देर के अंदर में, कि बहुत गुप्त रूप से उनका नाम दिया है। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यहां पर क्या बोल रहे हैं, तो कोई बोलता है भागवत में नाम नहीं है, लेकिन यहां पे इस श्लोक के द्वारा श्रीमती राधा रानी को इंगित किया जा रहा है, अन्य आराध्य अनया आराधितो नूनम, कि वह गोपी जिसके द्वारा भगवान विशेष रूप से पूजित हैं। और आराधना शब्द का मतलब क्या है? डिवोशनल सर्विस, भगवान की पूजा करना। तो श्रीमती राधा रानी का नाम तो डायरेक्टली राधा के रूप में ना हो, लेकिन इस वर्ड आराधितो के रूप में है। आराधितो मतलब जो कि भगवान की उपासना करने में, कि पर्सोनिफिकेशन का मूर्तिमान स्वरूपिणी है जो वह हैं। तो यानी श्रीमती राधा रानी डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्रेमामय भक्ति की मूर्तिमान स्वरूपिणी हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी उनका नाम ले रहे हैं, डायरेक्टली नहीं ले रहे। इसका क्या कारण है? एक बाह्य कारण है, एक आंतरिक कारण है। आंतरिक कारण सुखदेव गोस्वामी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यदि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम उच्चारण करते तो क्या होता, श्रीमद् भागवतम कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी एक्सटेसी में आ जाते। वे तो शुक है ना, राधा रानी के ही पैरट हैं, तोते हैं, तो वो कदाचित श्रीमद् भागवतम को महाराज परीक्षित के लिए पूरा ही नहीं कर पाते। इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने आप को श्रीमती राधा रानी के नाम से उच्चारण करने से रोका। लेकिन विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि चाहे सुखदेव गोस्वामी ने खूब प्रयास किया कि नहीं नहीं राधा रानी का नाम नहीं लिया जाए, नहीं लिया जाए, लेकिन उनके मुख रूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने राधा रानी का नाम ले लिया, यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधितः शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदुभिक घोष है, अर्थात वेरी रिजाउंडेड दिस वर्ड आराधितो। तो ये उनका आंतरिक कारण है सुखदेव गोस्वामी का। बाह्य कारण क्या है कि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है ये साधारणतया आप कहिए हर आम व्यक्ति इसको गलत समझता है। आम से आम नहीं, बड़े से बड़ा महापुरुष व्यक्ति भी इसको गलत समझता है कि यह लीला में कुछ खोट है, कि ऐसे तो नहीं करना चाहिए। कि देखिए कृष्ण, वैसे देखा जाए तो कृष्ण लंपट है ही, इज अ डिबॉची नंबर वन, है ना। लेकिन स्टिल लोग बोलते हैं कि देखो कृष्ण कितने कामुक व्यक्ति हैं और कितना उनका खराब चरित्र है, करेक्टर है। और ब्रज की गोपियों, विशेषकर श्रीमती राधा रानी को भी लोग, बहुत सारे लोग इस इनके लीला को गलत समझते हैं। तो चूंकि ताकि इसका मतलब क्या है कि इस लीला को समझने के लिए योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए, और वह साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो इसीलिए श्री राधा और श्री कृष्ण की जो दिव्य गुप्त लीलाएं हैं, जो निकुंजों की गौड़ियों वैष्णवों के लिए टॉप मोस्ट मतलब फीचर है कह सकते हैं आस्वादन करने के लिए, वह हमारे मतलब इन जनरल वैदिक साहित्य के अंदर बहुत आम तौर पर नहीं लिखा गया है, उनका मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि लोगों को वो समझने की पात्रता नहीं है। राधा और कृष्ण कौन समझ सकता है, उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए? श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को समझने के लिए क्या हमें प्राइमरी योग्यता होनी चाहिए? हाँ जी, समझो इतने कूलर चल रहे हैं, मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा है। महाप्रभु के फॉलोवर होने चाहिए, एक प्रभु जी कह रहे हैं। आप कुछ और कह रहे थे, कोई वहां से रिपीट कर सकता है इसे? शुद्ध सत्व गुण में होना चाहिए। और कोई अंतिम उत्तर? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना, उसका प्रेमांजन होने चाहिए, है ना, उसके आंखों में दिव्य चक्षु लगा होना चाहिए, उसके ऊपर राधा रानी की कृपा होनी चाहिए। अच्छा है, लेकिन राधा और कृष्ण की लीलाओं को समझने की योग्यता क्या है? केवल एक ब्रजवासी समझ सकता है, जो कि ब्रज में जिसके अंदर ब्रज का भाव है वास्तविकता के अंदर वही राधा और कृष्ण की लीला को समझ सकता है। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार पर किया भावे जहां ब्रजे ते प्रचार। अनार्पित चरिम चिरात करुणया वतीर्ण कलौ समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्व भक्ति श्रीयाम। कि जो उज्ज्वल रस है परकिया भाव को समझना इसको व्यक्ति आसानी से कोई भी नहीं समझ सकता, खासकर इस मंडेन बुद्धि से तो कोई भी नहीं समझ सकता है ना। ये 500-600 किलो ग्राम के दिमाग से तो कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता भगवान राधा और कृष्ण की लीलाओं को। अन्यथा इसके विपरीत हम देखते हैं कि जो है लोग बहुत ज्यादा गलत समझते हैं। अब लोग प्रश्न पूछते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या उनका विवाह हुआ था, विवाह क्यों नहीं हुआ। अब ऑफ कोर्स किसी किसी कल्प में जैसे भांडीर बन जाएंगे तो आपको वो स्थली दिखाएंगे जहां राधा और कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने स्वयं कराया था, तो वो तो एक बात है। लेकिन एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आया इसी प्रकार का प्रश्न लेकर के, बोला देखो कृष्ण और राधा रानी का विवाह तो हुआ नहीं, कृष्ण का 16,108 रानियों से द्वारका में विवाह किया उन्होंने और राधा रानी का विवाह हुआ अभिमन्यु नामक गोप से, तो फिर भी राधा और कृष्ण ऐसे वृंदावन में मिलते थे ये तो गलत है बिल्कुल। तो प्रभुपाद जी को साहब प्रभुपाद जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया उन्हें कि देखिए कृष्ण सबके पति हैं, हर व्यक्ति हर कोई हम सब का शरीर हम सब की प्रत्येक वस्तु वास्तविकता में भगवान की है, भगवान उसके प्रोपराइटर हैं और इसका हस्ताक्षर भगवान ने गीता में किया भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम या अहम सर्वस्य प्रभो मत्थ सर्वम प्रवर्तते। अनेक प्रकार से भगवान ने गीता में इस बात को जो है मतलब डंके की चोट पे भगवान ने बोला भाई मैं ही भोगता हूँ, ना भोगता हो ना उपभोक्ता हो, राइट। कई बार लिखते हैं ना कंज्यूमर को उपभोक्ता लिखते हैं, लेकिन ना हम भोगता है ना उपभोक्ता, हम कौन है भोग्य। हमारा जो अस्तित्व है वह है भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए वस्तुओं को सप्लाई करना, ना हम भोगता है ना उपभोक्ता है। कभी हम सोचे नहीं हम छोटे भोगता हैं स्मॉल है ना, ऐसा नहीं है कदाचित, राइट। तो प्रभुपाद ने समझाया कि नहीं हर व्यक्ति कृष्ण की संपत्ति है, तो कृष्ण ने कुछ भी गलत नहीं किया वास्तविकता के अंदर और ऐसे ऐसे कुछ कुछ कारण है, लेकिन वह व्यक्ति अड़ा रहा। तो फिर फाइनली प्रभुपाद एज यूजुअल हिज वंडरफुल स्टाइल ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, तो प्रभुपाद जी क्या बोले, कह रहे कि भाई देखो गुस्सा होकर के बोले उसे, कह रहे कि तुम कह रहे हो कि कृष्ण ने अनैतिक कार्य किया है, कृष्ण दूसरे की पत्नी के साथ में नृत्य करते हैं लीला करते हैं, वास्तविकता में कृष्ण अनैतिक नहीं है, कृष्ण लंपट नहीं है, तुम लंपट हो, तुम अनैतिक हो, क्योंकि तुम्हारा तुम्हारी पत्नी के साथ जो संबंध है ना वह अनैतिक है। क्यों? वास्तविकता में तो सब जीव कृष्ण की पत्नी है और कृष्ण की पत्नी को तुमने अपनी पत्नी बना लिया तो चोर कौन हुआ? अब व्यक्ति चुप करके फिर चला गया, राइट। तो ऐसे कुछ बदमाश लोग होते हैं, ढीठ होते हैं, अर्थात वो इस बात को समझ नहीं सकते तो इतना ग्रॉस बोल करके उनको समझाना पड़ता है, राइट। तो और बात तो सत्य है, ऐसे देखा जाए तो बात कोई गलत नहीं है, कड़वी लग सकती है किसी को लेकिन बात भी सत्य है, लेकिन ये उन ढीठ लोगों के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि लोगों के दिमाग में शुद्धता नहीं है, वह भाव नहीं है जिसके द्वारा राधा कृष्ण समझा जा सके, इसीलिए श्रीमती राधा रानी का नाम वैदिक साहित्य में बहुत खुल के नहीं बताया जाता बताया गया है, राइट। अब और जो है दूसरी बात जो प्रारंभ के अंदर ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्लियर कर देते हैं दो श्लोकों के अंदर, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के कारणों के लिए जब वो अपना मंगलाचरण बोलते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ल्लादिनी शक्तिरस्माद् एकात्मनावपि भुवा पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वद्वयं चैक्य आप्तं राधा भाव द्युति सुवलितं नौमे कृष्ण स्वरूपम्। तो वो कह रहे हैं कि देखिए राधा रानी कौन है वास्तविकता के अंदर, वह कृष्ण की अलादिनी शक्ति है, कृष्ण से ही निकले हैं, तो वह दोनों पहले एक ही थे और केवल दो भेद दो देह हैं, वो ऐसे दो अलग अलग जीव नहीं है. अभी हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपने दो देह हो एक जीव हो, ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन कृष्ण और राधा रानी एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन वो दो में विभाजित हुए हैं, राइट. क्यों? यद्यपि राधा और कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने को अनादि काल से पृथक कर रखा है. क्यों? क्योंकि कृष्ण जब कुछ इंजॉय करना चाहते हैं तो उन्हें बाहर से किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो कृष्ण से ही अंदर ही है ना. तो उनके आह्लादिनी कृष्ण की तीन मुख्य शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति. ऐसे तो अनंत शक्तियां हैं, लेकिन इन तीन में उसको कैटेगराइज किया जाता है. तो अंतरंगा शक्ति मतलब इंटरनल पोटेंसी, बहिरंगा शक्ति मतलब एक्सटर्नल पोटेंसी महामाया, और तटस्था शक्ति मतलब जीवात्मा. तो अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा, अंतरंगा शक्ति में जो भगवान की प्लेजर गिविंग पोटेंसी है, वह उसके पर्सोनिफिकेशन कौन है? श्रीमती राधा रानी, अलादिनी शक्ति, जो भगवान कृष्ण को आनंद देने में सदैव जुटी रहती है. यानी भगवान श्री कृष्ण को कुछ भी आनंद मिलता है तो कौन प्रदान करता है? श्रीमती राधा रानी, उनकी अलादिनी शक्ति. जैसे जब भगवान श्री कृष्ण को कोई लीला करनी होती है तो उसके लिए सब जो सामान है पैराफर्निलिया, वो कौन अरेंज करता है? बलराम जी, वो बलराम जी अरेंज करते हैं. जब भगवान को विश्राम करना होता है तो शैया बन जाते हैं. जितने भी हम देखिए मृदंग, करताल और उपचार, भगवान के पूजन अर्चन इत्यादि के अंदर जितने भी सामग्री, चामर, मोरपंख इत्यादि इस्तेमाल करते हैं, भगवान का सिंहासन है, ये सब किसका विस्तार है? बलराम जी का, श्री नित्यानंद प्रभु का. उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने में सारे व्यवस्था कौन करती है? भगवान के लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी. आह्लाद मतलब होता है आनंद प्रदान करना. जैसे हम बोलते हैं प्रहलाद आह्लाद दायिने, जो प्रहलाद महाराज को आनंद देने वाले हैं, ऐसे नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूं. तो आह्लादिनी मतलब जो आनंद प्रदान करने वाली है, राइट. तो अब वही राधा और कृष्ण क्या हो गए हैं? दोनों पहले एक थे, एक से कितने बने? दो. अब वो दोनों कैसे हो गए हैं? दोनों फिर एक हो गए. किस रूप के अंदर? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में. जय श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य. और वो प्रकट हुए कलयुग के अंदर इन जीवों, हम सब बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए. तो ऐसे कविराज गोस्वामी और डिटेल के अंदर राधा रानी के तत्व के बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण राधा रानी के सेवा की भावना को और राधा रानी के को कृष्ण से प्राप्त होने वाले आनंद को, राधा रानी कृष्ण और राधा रानी के माधुर्य को आस्वादन करने के लिए, उस भाव को, महाभाव को स्वीकार करने के लिए श्री कृष्ण किस रूप में आते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप के अंदर. तो ऐसा तत्व बताया जाता है. यानी राधा और कृष्ण कौन है? वो अभिन्न है बेसिकली. तो विवाह किसका किया जाता है? दो भिन्न लोगों का, राइट. जब एक ही व्यक्ति है और दो देह में है तो विवाह करें चाहे ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फिर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण विवाह कर लेते तो हमारे मन में डाउट नहीं आता, राइट. भाई अगर भगवान को लीला करने थे ठीक था, और ये भी जानते थे कि हम बद्ध जीव खुराफाती हैं, है ना, कि नहीं, उल्टे सीधे विचार हमारे मन में आएंगे, काम वासना हमारे अंदर इतना है, तो फिर भगवान विवाह कर लेते, हम शांति से उसको एक्सेप्ट कर लेते. नहीं, भगवान क्या करते हैं? कृष्णा वॉन्ट्स टोटल सरेंडर. तो हमारे भौतिक समाज के नीति नियम से हमें भगवान को नहीं समझने का प्रयास करना चाहिए, रादर भगवान के नीति नियम से हमें अपने आप को ढालने का प्रयास करना चाहिए. इसीलिए जो शास्त्र हैं वह है कि क्या चीज भगवान को प्रसन्न करती है, क्या भगवान को आनंद देती है. और भगवान क्या है? कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर. कृष्ण कैसे हैं? एक प्रेमी हैं. और कैसे प्रेमी हैं? बहुत ही राजसी प्रेमी, एरिस्टोक्रेटिक. मतलब ऐसा साधारण प्रेम नहीं होता उनका, छोटा मोटा प्रेम ऐसा नहीं. और ट्रांसेंडेंटल मतलब बहुत ही जगत का प्रेम नहीं है, है ना, कि जो आज है कल खत्म हो गया. क्या है वो? लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, है ना. तो उस प्रकार का प्रेम नहीं है राधा कृष्ण भगवान का. और कृष्ण इज ट्रांसेंडेंटल एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर. जेलस मतलब क्या है? वो नहीं स्वीकार कर सकते कि आप किसी अन्य से प्रेम करें. तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि केवल और केवल मुझसे प्रेम करो, एकमात्र मुझसे और किसी से नहीं. अच्छा, तो इसीलिए भगवान गोपियों के माध्यम से हमको एक्सक्लूसिव सरेंडर कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गोपियां वह हैं जिन्होंने किसी भी वस्तु का त्याग कर, प्रत्येक वस्तु का त्याग कर दिया, उनको कुछ भी त्याग करने में रत्ती मात्र भी संकोच नहीं हुआ। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है बलि महाराज का भी, जिन्होंने वामन देव को क्या किया, संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। उसी प्रकार गोपियां भगवान श्री कृष्ण के हाथ में खिलौने के मात्र है, कठपुतली के समान है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी के हृदय की जो प्रार्थना है वह क्या है, आशीलश्यवा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनार मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नातस्तु सये वनापरः। कि हे भगवान श्री, हे आशीलश्यवा पादरताम पिनष्टु माम, कि चाहे आप मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन देकर मुझे मर्माहत करें, वे लंपट कुछ भी क्यों ना करें, वे तो सब कुछ करने में पूर्णतया स्वतंत्र हैं, किंतु श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं। राइट, कि कृष्णा इज माई अनकंडीशनल लॉर्ड एंड मास्टर, अर्थात कृष्ण हमें दर्शन दें चाहे ना दें, कृष्ण हमें कितनी पीड़ा में क्यों ना रखें, चाहे वो सुख दें चाहे वो हमें दुख दें पीड़ा दें, प्रकट ना हो करके चाहे प्रकट होकर आनंद दें, लेकिन फिर भी क्या है, हम हमेशा कृष्ण की क्या रहेंगी, दासियां रहेंगी, सेविका रहेंगी। यानी वह कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कुछ भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए कृष्ण जो हैं गोपियों के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, तो एक बात मैं आपको जो भूलना भूल गया वह था कि श्रीमती राधा रानी के विषय में फिर शास्त्रों में लिखा नहीं, मंदिरों में भी उनके विग्रह नहीं है, तो राधा और कृष्ण की विग्रहों की स्थापना शुरू कहां से हुई? फाइनली पुरातन किसी मंदिर में तो है ही नहीं, राइट, कहां से शुरू हुई है उपासना? यह उपासना शुरू हुई किससे? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से। और फिर राधा और कृष्ण की उपासना वास्तविकता में चैतन्य महाप्रभु ने आके ही एस्टेब्लिश की। यह चैतन्य महाप्रभु का कह सकते हैं एक्सक्लूसिव विशेष योगदान है। किसी अन्य वैष्णव आचार्य ने, किसी अन्य अवतार ने ब्रज के इस भाव को प्रकाशित नहीं किया जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया। इसलिए नमो महावदान्याय कृष्ण प्रदायते, नहीं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्यों म्यूनिफिशेंट है, सबसे मैग्नानिमस है, महावदान्याय क्यों है? क्योंकि वह केवल कृष्ण को प्रदान करने वाले नहीं है, वह कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले हैं, जिस कृष्ण प्रेम को आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण चैतन्य के रूप में आते हैं। मतलब द कृष्ण हु इज हैंकरिंग आफ्टर कृष्ण प्रेम, यू नो दैट इज लॉर्ड चैतन्य हैज कम टू गिव ऑल ऑफ अस। हमको वह कृष्ण प्रेम देने के लिए आए, भगवत प्रेम देने के लिए भी नहीं आए हैं, है ना, कृष्ण का प्रेम देने के लिए आए हैं। वो भी किन के मार्ग से? गोपियों के मार्ग से। आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना व्रज वधु वर्गेन वा कल्पिता। कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद भागवत पुराण प्रेम पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्र। तो कि आराध्य भगवान व्रजेश तनय, जो नंद महाराज के पुत्र हैं वह हमारे आराध्य देव हैं। तद्धाम वृंदावनम, उनका घर क्या है, घर का एड्रेस क्या है, वृंदावन। रम्या काचित उपासना, उनको कोई कैसे प्राप्त कर सकता है? केवल यदि कोई व्रज वधु व्रजांगनाओ गोपियों के मार्ग को अनुगमन करेगा वही व्यक्ति केवल रानी और कृष्ण की उपासना पहले क्यों नहीं होती थी? क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करती थी इन द सेंस भौतिक जगत के अंदर, ये प्रकाशित नहीं की गई थी, यह प्रकाशित की गई सिर्फ और सिर्फ श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। इसीलिए लेटेस्ट भी आपको कोई मंदिर मिल जाएगा राधा कृष्ण का, तो सिर्फ 500 साल पुराना होगा वो मैक्सिमम, उससे पहले राधा कृष्ण के कोई पुराने आपको विग्रह नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि वो पूजा इस धराधाम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसीलिए वासुदेव घोष ठाकुर एक श्लोक एक भजन के अंदर लिख रहे हैं, यदि गौरा न होई तो तबे की होई तो के मने धरी ताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के, मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार, बर जयुवती भावेरा भगति सकति होई तो कारा। तो वासुदेव को ठाकुर आगे भी दौर पर आ रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं, यदि गौर न हो तो तबे की हो तो केमोने धरी ताम दे, कि इस धरती पे क्या होता, हम कैसे जीवन तारी चैतन्य महाप्रभु ने, तो राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तके, कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम की प्रेम रस की महिमा उसकी सीमा को इस जगत में लोग कैसे जानते। मधुर वृंदा विपिन माधुरी, प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव सहित भक्ति करने की शक्ति किसमें होती, जो ब्रज की बालाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करती, ब्रज युवती भावेर भक्ति शकति हुई तो कार। वास्तव में तो वृंदा देवी के सर्वोच्च मधुर वन में प्रवेश करने के लिए ब्रज की गोपियों की चातुर्यपूर्ण कुशलता अत्यंत आवश्यक है। अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण को गाली दे सके प्रेम से, जो कृष्ण की सराहना कर सके, जो कृष्ण के लिए कुछ भी कर सके, कुछ भी त्याग कर सके और कुछ भी स्वीकार कर सके, वह है गोपियां, राइट। ऐसे नहीं केवल त्यागना ही कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो स्वीकार करना वो स्वीकार करती हैं, जो जो त्यागना उसे त्याग देती हैं, उनके लिए कोई और कंसिडरेशन ही नहीं है। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी और कृष्ण विवाह क्यों नहीं करते, क्योंकि जो पैरामोर लव है उसे क्या बोलेंगे, मतलब परकिया भाव, अर्थात विवाह के बाहर जो संबंध है, छुप छुप के मिलने के अंदर, उसमें जो आनंद है वह शायद पति पत्नी के आनंद में भी ना हो, राइट। तो भगवान श्री कृष्ण अब ये अभिमन्यु कौन है, तो ऐसे किसी किसी शास्त्र में तो हमारे आचार्य बताते हैं कि अभिमन्यु कृष्ण के ही अंश हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो राधा रानी का स्पर्श कर सके केवल कृष्ण के अलावा, तो वो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। और अन्य आचार्य बताते हैं कि अभिमन्यु जो हैं केवल उनके पति का नाम था, मतलब भौमलीला के अंदर, ये वो अभिमन्यु नहीं है सुभद्रा नंदन। कभी आप बोले कि अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, कई के लोग डाउट में आ जाते हैं, कन्फ्यूजन, तो वो अभिमन्यु नहीं, ये अभिमन्यु गोप हैं जो ब्रज में, मुझे गाँव तो नहीं शायद यावत या ऐसा किधर तो भी उनका घर है, तो वो गोप से राधा रानी का विवाह होता है। ऐसे तो नंदा महाराज यशोदा रानी सब चाहते थे कि कृष्ण का विवाह राधा रानी के साथ ही हो। आप सब जब बरसाने के पास जाते थे, पीली पुकार आती है, तो एक बार किसी ने बताया कि राधा रानी को दुर्वासा मुनि का वरदान प्राप्त था कि वो जो भी बनाएंगी क्या होगा, वो अमृत के समान होगा, और जो भी उस व्यंजन को खाएगा कभी उसको रोग नहीं होगा। तो यशोदा माता ने कृष्ण राधा रानी को बुलाया, जब ये सुना कि ऐसा वरदान है, बोला कि कन्हैया के लिए तुम बनाओ। तो राधा रानी ने बहुत सुंदर सा पकवान बनाए। राधा रानी की विशेष बात जानते हैं क्या है, शी नेवर कुक्स द सेम आइटम अगेन। रोज कृष्ण के अलग अलग आइटम बनाती हैं, वो कभी कृष्ण के लिए एक आइटम रिपीट ही नहीं करते, और हर आइटम अलग से अलग होता है। तो कृष्ण के लिए बड़े सुंदर उन्होंने सब बनाया, और जो है तो राधा रानी और कृष्ण ने बड़े चाव से खाए, लेकिन उनको पता नहीं था राधा रानी ने बनाया, उनको लगा यशोदा माई ने बनाया है। तो यशोदा ने जब खिलाया उनको अच्छे से, तो फिर जब कृष्ण जंगल में चले गए तो यशोदा माता को राधा रानी पे बहुत, यशोदा माई को बहुत प्रेम आता है, तो वो मनी मन विचार कर लेती हैं कि राधा रानी मेरी बहू बननी चाहिए, कृष्ण से विवाह इन्हीं का होना चाहिए। तो क्या करती हैं वो, कि ऐसे जब बोलते ना हाथ पीले कर देना, तो वो ऐसे उनके हाथों पे हल्दी लगा देती हैं सब। तो ये प्रथा होती थी कि यदि आपने किसी को अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लिया है तो राधा रानी की बड़ी प्रसन्नता होती है, और वो चली जाती हैं आगे। अब जब घर जा रही होती हैं तो रास्ते में सोचती हैं कि अरे चलो ये तो यशोदा माई की इच्छा से हुआ है, लेकिन कीर्तिदा और ऋषभानु का क्या, मेरे माता पिता को तो पता नहीं, तो ऐसे कैसे जाऊंगी और पहचान जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में एक सरोवर था तो वहां पे अपने हाथ को धोया, ऐसा जैसे उस कुंड में डाला तो वो कुंड क्या बन गया, वो कुंड पूरा पीले रंग का हो गया, इसलिए आज भी उसको बोलते हैं पीली पुकुर। तो ब्रजवासी पीली पुकुर बोलते हैं, बरसाना में घुसते ही राइट साइड में थोड़ा जाएंगे तो अभी तो अच्छा, उसको पहले अच्छा साफ सुथरा नहीं था, अभी तो ब्रज फाउंडेशन ने बहुत उसको एस्टेब्लिश किया है ना। तो ऐसे वो पूरा का पूरा उसको पीली पुकार, अभी शायद प्रेम सरोवर के रूप से या ऐसे कुछ, तो प्रेम सरोवर तो नहीं, प्रेम सरोवर अलग है, किसी अन्य नाम से उसका जो नाम है जानते हैं। और फिर कृष्ण वहां पे आते हैं, अब वो तो पुकुर राधा रानी के प्रेम से पूरा पीला हो गया, उनके हाथ मिलने लगी थी। तो कृष्ण में विवाह वो स्नान करते हैं तो क्या होता है, उनका श्याम सुंदर वर्ण क्या हो जाता है, वो पीला रंग धारण कर लेते हैं, वह कांतिक, और श्याम सुंदर कौन बन जाते हैं, श्री गौर सुंदर, ऐसा है। तो ये लीला वहां पे एक होती है। तो राधा रानी और अभिमन्यु की हम बात कर रहे थे, तो यह अभिमन्यु जो है कृष्ण के ऐसे अवतार है, लेकिन इस लीला के अंदर विशेष आनंद को वर्धन करने वाले के लिए जो है ये अभिमन्यु है। और साथ में कौन है? अभिमन्यु की माता का नाम क्या है? जटिला। और उनकी बहन का नाम क्या है? कुटिला, राइट। तो अभिमन्यु बहुत सरल स्वभाव के हैं, लेकिन जटिला और कुटिला को बड़ा गुस्सा आता था कि ये राधा रानी जो है हमारी बहू छुप छुप के कृष्ण से मिलती है, उस काले श्याम कृष्ण से जो है, तो ये क्या है, चरित्रहीन है, ऐसा उनको लगता था। लेकिन उनको कोई एविडेंस नहीं मिलता था कभी भी कि सिद्ध कर सकें। प्रूफ तो चाहिए ना, किसी पे आप अगर आरोप लगाने वाले हैं तो बिफोर यू किसी को मुजरिम साबित करने से पहले आपको सबूत देने पड़ेंगे सारे। तो हमेशा विशेषकर जो कुटिला उनकी ननद थी, वो हमेशा इसी फिराक में रहती थी कि भाई कब जो है राधा रानी के प्रति कुछ ऐसा एविडेंस ढूंढा जाए। तो एक बारी क्या हो गया कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए आए, अभिमन्यु चले गए घर से, तो कृष्ण अभिमन्यु का वेश धारण करके जल्दी वापस आ गए। तो जटिला ने पूछा, अरे भाई तुम बड़े जल्दी आ गए। तो बोले, हाँ मुझे कुछ कार्य था। बड़ा प्रेम से भगवान ने बोला कि मैं नहीं, बोले कि मैं आपसे मिलने के लिए आया, मैं सोच आपसे मेरे को थोड़ा मन कर रहा था, गया वापस, आपकी याद आ रही थी तो मैं वापस आ गया। तो जटिला को बड़ा अच्छा लगा, अरे भाई बड़ा अच्छा पुत्र है ना। तो उन्होंने बोला, ठीक है आप अंदर जाके बैठो। अब अभिमन्यु के रूप में आए थे, तो कृष्ण जाते हैं राधा रानी के कक्ष में और उनके साथ में रहते हैं। कुटिला को शक हो जाता है, तो वो आती हैं और वहाँ पे कृष्ण अपने रूप के अंदर राधा और कृष्ण दोनों होते हैं। तो वो क्या करती हैं, दरवाजे को बाहर से ऐसा कुंडी मार देती हैं कि कृष्ण भाग ना पाए। लेकिन कृष्ण को आवाज़ सुनते जैसे तो खिड़की से भाग जाते हैं कृष्ण। तो लेकिन कुटिला कहती है कि देखो अभी जो है मैंने एक पार्ट मिस कर दिया। क्या होता है, थोड़ी देर में फिर अभिमन्यु वापस आ जाते हैं। तो अभी जटिला बोलती, अरे तुम अभी तो आए, दोबारा कैसे आ गए? तो ऐसे वो बोलते कि नहीं, मैं तो गया था, अभी वापस नहीं आया। तो अब उनको डाउट आ गया कि ये असली अभिमन्यु है जो पहले आया था, वो असली अभिमन्यु है ना। तो ऐसे करके जो है, और बाद में समझ में आया कि ये असली अभिमन्यु है और वो कृष्ण थे। लेकिन अब एविडेंस तो कोई है नहीं, कृष्ण तो भाग गए थे। दूसरी बार एक बार ऐसा होता है, कृष्ण मौका देख के फिर आते हैं। तो कुटिला को समझ आता है कि कृष्ण ये जो हैं राधा रानी कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ अकेली हैं। तो वो सबको एक बार क्या होता है, सबको बुला के ले आती, देखो मैं कहती थी राधा रानी का चरित्र ठीक नहीं है। तो देखा वहाँ पे क्या था, उसने क्या खिड़की से काले व्यक्ति को देखा था बस, तो समझ गई काले तो कृष्ण है। लेकिन देखा कृष्ण क्या बन गए, जो दुर्गा देवी के काली माता का रूप रहता है उसमें बन गए और राधा रानी उनकी पूजा कर रही थी। तो कुटिला को बड़ा अपमानित महसूस हुआ कि देखो सबने तारीफ की राधा रानी की, देखो वो तो देवी की उपासना कर रही हैं। ऐसी एक बार और हुआ, तो इस बार कुटिला ने बंद कर दिया, कृष्ण तो भाग गए खिड़की से। तो फिर कुटिला ने जब थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला, अंदर आई, तो उसने देखा भाई कृष्ण तो है नहीं। तो पूरे रूम की तलाशी वगैरह ली, तो उन्हें क्या मिला, बिस्तर पे एक बांसुरी मिली। तो समझ गई बांसुरी राधा रानी तो बजाती नहीं, अभिमन्यु बजाता नहीं, मैं और कुट जटिला बजाते नहीं, तो ये तो पक्का कृष्ण का ट्रेडमार्क है, राइट। तो बोली देखो, सबको बुला के लेके आती है, बुलाने के लिए राधा रानी का हाथ पकड़े घसीट रही हो, लेके जा रही होती है बाहर कि देखो आज मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी, तुम वास्तविकता में चरित्रहीन हो, हमारे कुल पे कलम को, ऐसे बोलते बोलते। और बांसुरी साथ में लेके जा रही थी सबको बताने के लिए, राधा रानी तो रो रही थी। तो रास्ते में कौन मिलती है, पौर्णमासी मिलती है उनको। पौर्णमासी वृद्ध स्त्री हैं जो कि ब्रज के अंदर रिस्पेक्टेड हैं, वो योग माया हैं। जय पौर्णमासी जय आभीर नागरी। तो कृष्ण के सब लीलाओं के अंदर बहुत ही स्पेशल फ्लेवर ऐड करती हैं पौर्णमासी। तो पौर्णमासी बोली, जटिला कुटिला क्या हुआ, तुम ऐसे राधा रानी को, राधा को क्यों लेके जा रही हो, ये रो रही है इतने। तो बोली देखो, इसके कक्ष से ये बांसुरी प्राप्त हुई, यही अकेले में कृष्ण से मिलती है। बोली क्या बात कर रही हो तुम, तुम्हें नहीं मालूम कल रात में पूरे ब्रज के अंदर बारिश हुई थी। किस चीज की बारिश हुई थी, बंशियों की बारिश हुई थी, भगवान की ये जो बांसुरी है इसकी बारिश हुई थी, तुम अपने कक्ष में जाके देखो। तो अपने कक्ष में गई, 3 बांसुरी मिली। जटिला के कक्ष में गई, वहां 6 बांसुरियां मिली। तो बोले अभी ये तो सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, है ना। तो ऐसे करके जो है बहुत सारे ऐसे लीलाएं होती हैं जिसमें वो कभी सिद्ध नहीं कर पाती कि राधा रानी का चरित्र थोड़ा भी उसके अंदर खोट है। एक बार ही आप, लेकिन राधा रानी को बड़ा बार बार बहुत विरह में किसी स्त्री को बार बार ऐसे बोला जाए घर के अंदर, अरे संदेह किसी देखा जाए तो बड़ा। और राधा रानी कृष्ण को भूल नहीं सकते थे। तो कृष्ण ने देखा कि भाई ये तो ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं, एक दिन कृष्ण सुबह बीमार पड़ गए, बड़ा सिर में दर्द होने लगा उन्हें। तो नंद महाराज बड़े चिंतित हो गए, भाई इतना बुखार हो गया, सिर दर्द हो रहा है, क्या किया जाए। तो अब बोले किसी वैद्य को बुलाते हैं, तो बाहर गए, थोड़ी दूर को उन्हें एक वैद्य आता हुआ मिल गया। तो उसको बोले कि चलो भाई मेरा बेटा बीमार है। तो गए तो उन्होंने नाड़ी वाड़ी चेक की कृष्ण की, बोले ये तो बड़ा विशेष रोग है, तो इसका उपाय क्या है? बोले उपाय केवल मैं ही कर सकता हूँ। बोले करिए, जल्दी कीजिए, शीघ्र कीजिए। बोले इसका उपाय तब है कि जब पूरे ब्रज के अंदर सबसे पतिव्रता स्त्री होंगी, द मोस्ट चेस्ट वुमेन, उसको यमुना जी से पानी लेके आना होगा, और पानी लेकर के आएगी और उस पानी से इनको कृष्ण को स्नान कराएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, इनका रोग समाप्त हो जाएगा। बोले यमुना से पानी, यमुना पास में बहती है, इतना पानी ले आएंगे, क्या दिक्कत है? और इतनी स्त्रियां पतिव्रता हैं। तो यशोदा माई बोली कि मैं ले आती हूँ। तो बोले नहीं, माँ नहीं ला सकती। चलो ठीक है, तो किसी और स्त्री को ले आते। बोले लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? कि जो पात्र है ना उसमें 100 छेद किए रहेंगे नीचे, जैसे हम भगवान का अभिषेक करते हैं ना, उसको सहस्त्र धारा बोला जाता है, मतलब उसमें 100 ऐसा छेद रहेगा। सहस्त्र मतलब ऐसे 1000 बेसिकली, तो सहस्त्र मतलब 1000, हाँ विष्णु सहस्त्र 1000। तो ऐसा उसमें 100 छेद रहेगा, उससे पानी लेकर के आना। 100 छेद रहेगा, कैसे टिकेगा पानी उसके अंदर? तो बोले नहीं, यही शर्त है। तो बोला ऐसे तो कोई कर नहीं पाएगा, ये तो कोई नहीं कर सकता। बोले कि नहीं, पतिव्रता स्त्री कर सकती है। तो नंद महाराज बोले नहीं नहीं ऐसा। बोले तो आप ही बताइए कौन स्त्री है ब्रज में जो कर सकती है। बोले मैं 2 स्त्रियों को जानता हूँ ब्रज के अंदर, बोले नाम बताओ जल्दी। बोले एक जटिला, एक कुटिला। तो नंद महाराज गए उनको बुलाने के लिए, और दोनों को बड़ा लग रहा था, वाह देखो बहुत अच्छा, देखो आज किसी ने हमारी कद्र करी ब्रज में, हम कितने विशेष हैं। तो सबसे पहले कुटिला बोली जटिला को, देखो आप बूढ़ी हो, मैं कर लेती हूँ, ठीक है ना, आपको तकलीफ होगी मैं ले जाती। तो गई, पानी भरा, क्या हुआ, सारा पानी नीचे। और जटिला देने लगी गाली, देखो तुम पतिव्रता नहीं हो, खानदान का नाम खराब कर दिया ये वो। तो ठीक है, अब बची तो एकमात्र दूसरी बस जटिला। तो जटिला को वो गई, तो वो पानी गिर गया, वो भी शर्म से आंख नीचे करके वापस आ गई। तो फिर अब तो बड़ी दुविधा हो गई, नंद महाराज के पुत्र कृष्ण का बुखार कैसे ठीक हो। बोले वैद्य को बोला महाराज आप कुछ करिए। तो बोला मैं एक और स्त्री को जानता हूँ जो निश्चित कर सकती है। बोले कौन? वो इनकी बहू राधा रानी। अच्छा, तो अब जटिला कुटिला को शौक लगे, जो हम नहीं कर पाए, हम तो बिल्कुल, हमारे चरित्र में खोट नहीं है, इसके तो खोट ही खोट है, राइट। तो राधा रानी बोली नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा ऐसा। लेकिन फिर वो उनको लेकर के गए, और यशोदा माई ने बोला कि नहीं आप करो। तो भरा, एक भी बूंद पानी नहीं गिरा, कृष्ण का अभिषेक किया, कृष्ण ठीक हो गए, राइट। और ऐसे कृष्ण ने सिद्ध किया कि राधा रानी क्या है, बोल पाते। तो ऐसे अभिमन्यु जटिला कुटिला क्या करते हैं, केवल कृष्ण के इन लीलाओं में आनंद का वर्धन करते हैं बेसिकली, राइट। इनमें फ्लेवर्स ऐड करने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। इनको भौम धरातल पे देखना एक बहुत बड़ी नहीं, आपका ये भयंकर गलती होगी, एक बहुत बड़ा अपराध होगा, है ना। और अधिकांश लोग इस अपराध को करते बैठते हैं, इसीलिए जो है ये राधाष्टमी का जो पर्व है, थोड़ा सा कभी कभी एक क्या कह सकते हैं, कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर जाता है बहुत बारी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सहजिया भाव भी देखने को मिल जाते हैं ऐसे, राइट। तो मैं इस विषय पे इसलिए बोल रहा हूँ, कई भक्तों ने एक्सपेक्ट भी किया होगा मुरली कृष्णदास बोलेगा तो कुछ ऐसा ही खड़क बोलने वाला है, लेकिन विशेषकर हम किस राधा और कृष्ण की पूजा करते हैं, हमें प्रभुपाद जी ने क्या आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं, क्या हम राधा और कृष्ण की ब्रज भाव के अंदर सेवा करते हैं? नहीं, हाँ और नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी के एक शिष्या ने प्रश्न पूछा कि देखिए कृष्ण तो एक ग्वाले हैं, राधा रानी एक गोपी हैं, तो हम ऐसे राजा की तरह उन्हें क्यों श्रृंगार करते हैं, राइट। इतना कीमती पोशाक और आभूषण इत्यादि, ये सब की जरूरत नहीं है, क्यों ना सरल वस्त्रों में उनको किया जाए। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, कृष्णा एंड राधा रानी आर कावर्ड बॉयज एंड कावर्ड गर्ल गोपीज, बट वी वर्शिप देम इन द मूड ऑफ किंग एंड क्वीन। हम उन्हें राजा और रानी के भाव में, लक्ष्मी नारायण के रूप में उनकी उपासना करते हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण की जो उपासना है वो बहुत ही गोपनीय है, बहुत ही गुह्य है। उनकी उपासना पांच रात्रि की विधि के द्वारा होती ही नहीं है, ऐसा है। उनकी उपासना केवल और केवल राग मार्ग के भक्त ही कर सकते हैं, केवल ये जो वैधि साधना भक्ति के भक्त हैं वह राधा और कृष्ण की उपासना नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद इसको चतुर्थ स्कंद के जो है जस्ट वन सेकंड पृथु महाराज ये भगवान शिव जी के गीत के अंदर इस बात को बताते हैं। चौथे अध्याय के 24वें श्लोक के 45 और 46वें तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं 424, 45 और 46 प्रभुपाद कह रहे हैं कि सामान्यतः भगवान की पूजा नारायण या विष्णु की पूजा से प्रारंभ होती है, किंतु कृष्ण तथा राधा की पूजा गुप्त विधि से की जाती है। भगवान नारायण की पूजा पांचरात्रि की विधि से की जाती है, जबकि भगवान कृष्ण की पूजा भागवत विधि से की जाती है। उनकी पांचरात्र विधि से किए पूजा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा भागवत विधि से नहीं कर सकता है। वास्तव में नवदीक्षित भक्त भगवान की पूजा नारद पंचरात्र द्वारा निर्दिष्ट पांचरात्रिक विधि से ही करते हैं। नवदीक्षित भक्त, ध्यान से सुनिएगा आप, नवदीक्षित भक्त राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? फिर हम क्या कर रहे हैं? अतः मंदिरों में विधि विधानों के अनुसार ही लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। भले ही मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह हो, किंतु नवदीक्षित भक्तों द्वारा की गई पूजा लक्ष्मी नारायण पूजा के रूप में ही स्वीकार्य होती है। पांचरात्रि की विधि से की गई पूजा विधि मार्ग कहलाती है और भागवत विधि से की गई पूजा राग मार्ग कहलाती है। राग मार्ग के सिद्धांत उन भक्तों के लिए हैं जो वृंदावन पद को प्राप्त हैं। तो अर्थात आगे प्रभुपाद जी और भी इसको तात्पर्य के अंदर बताते हैं। मुख्यतः क्या है कि जो हम पांचरात्रि विधि से भगवान का उपचार करते हैं, जो मंत्र यूज करते हैं, जितने उपचार भगवान को आसन पाद्य अर्घ्य आचमन ये सब ऑफर करते हैं, इवन जो हम मंत्र डीटी वर्शिप के अंदर यूज करते हैं, पुरुष सूक्त इत्यादि, ये सब भगवान लक्ष्मी नारायण के मंत्र हैं, इसी राधा और कृष्ण के मंत्र नहीं है वास्तविकता के अंदर। तो ये प्रभुपाद जी का रिपीटेड हमको इंस्ट्रक्शन, अपने खासकर डिसाइपल्स को यह इंस्ट्रक्शन था कि राधा और कृष्ण की उपासना किस भाव से की जाए? लक्ष्मी नारायण की, क्योंकि राधा और कृष्ण के अंदर अन्य सारे रूप हैं भगवान के, तो लक्ष्मी नारायण भी हैं। तो हम जो भक्त हैं जो कि राग मार्ग के स्तर पर नहीं हैं, वृंदावन ब्रजभाव नहीं है, हमें पूर्ण ऐश्वर्य के साथ में भगवान श्री श्री राधा रानी और कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, जैसा कि एक राजा की और एक रानी की उपासना की जाती है। इसीलिए बहुत सारे भगवान के इस सेवा के लिए लक्ष्मी नारायण के रूप में नीति नियम है जिनका हमें पालन करना चाहिए, और इस तत्व के बारे में बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं। हमारे मंदिर में तो हम अभी कई पुजारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से उसी स्तर से जिस पर प्रभुपाद चाहते थे वैसे ही की जाए भगवान की सेवा। तो फिर अब ये प्रश्न आता है, अब राधाष्टमी है तो विशेष क्या रहता है, कौन सा प्रश्न रहता है सबके जवान पे? चरण दर्शन होगा कि नहीं होगा राधा रानी का? तो प्रभुपाद इसके विषय में कहते हैं, ये एक विरोधाभास पद है, पता नहीं मैं सही जगह पे बैठ के इस बात को कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रमाण है डीटी मिनिस्ट्री का पोजिशन पेपर, जिसमें प्रभुपाद क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं, राधा रानी चरण आर नेवर टू बी शोन। राधा रानी के चरण इतने दिव्य हैं कि स्वयं कृष्ण उनका दर्शन देखने के लालायित रहते हैं। हम जैसे लोगों के क्या अनर्थों से भरे हुए लोगों के क्या कहने कि हम भगवान श्रीमती राधा रानी के शुद्ध चरणों के दर्शन कर सकें, राइट है ना? कि जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी श्री नारद मुनि इत्यादि वह राधा कुंड में स्नान करने के लालायित रहते, लेकिन प्रवेश नहीं होता उन्हें, क्योंकि राधा कुंड में कौन प्रवेश कर सकता है? केवल गोपियाँ भी नहीं कर सकती वहां पर, कौन कर सकता है? केवल और केवल मंझारियां प्रवेश कर सकती हैं, लाइक दैट। तो इसीलिए भगवान श्रीमती राधा रानी के जो चरण हैं वो बहुत दिव्य हैं। तो अब ये बात आती है कि पहले क्यों दिखाए जाते थे? प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद ने इसे कभी रिकमेंड नहीं किया, जो है कभी भी रिकमेंड नहीं किया, ना ये होता था कभी भी ये प्रथा। 1980 के दशक के अंदर कहीं ना कहीं प्रथा चालू हुई, क्योंकि वृंदावन के अंदर देखिए जहाँ ब्रज भाव है वहाँ एक्सेप्शन थोड़ा आ जाता है, राइट? तो वृंदावन में हालांकि प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहे, और भक्तों का कहना है कि निश्चित रूप से वहाँ पे प्रथा रही होगी, ट्रेडिशन रहा होगा जहाँ श्रीमती राधा के चरण दर्शन कराए जाते थे, लेकिन प्रभुपाद ने इसकी स्वीकृति कभी नहीं दी, राइट? और प्रभुपाद ने पत्र में क्लियर लिखा, यू आस्क मी सेवरल क्वेश्चंस अबाउट द डीटी वर्शिप इन लॉस एंजेलिस, so I shall answer them one after another. Your first question, shall Srimati Radharani's feet be showing? The answer is no. They should never be seen. Krishna's feet, however, should be showing. Krishna ke charan kamal ka aap darshan karaiye, lekin Radharani ke charan darshan kabhi bhi nahi, right? To jo hai, na Radha Ashtami pe, na Gopa Ashtami pe. इनफैक्ट मैंने पिछले 3 साल से बहुत सर्वे करने का प्रयास किया कि प्रथा चालू कहाँ से हुई, कहीं ना कहीं तो उसका स्रोत होगा। आश्चर्य की बात है, अपसंप्रदाय हो संप्रदाय हो, कहीं पर स्रोत भी नहीं मिला, राइट। और एक भक्त ने को हमने भेजा कि तुम सारे वृंदावन के गोस्वामी मंदिरों में जाके दर्शन करके आना। बोला प्रभु मैं राधाष्टमी के दिन शाम के समय सब मंदिर में दर्शन करके आया, एक भी मंदिर में राधा रानी का चरण दर्शन नहीं कराया, राइट। तो समहाउ ये कहाँ से प्रथा चालू हुई, ये इसका ओरिजिन मैंने कई भक्तों से भी पूछा लेकिन अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आपको यदि किसी को प्राप्त हो तो जरूर मेरे एडिशन कर दीजिएगा हिस्ट्री के ज्ञान के अंदर। तो कहने का अर्थ है ये प्रथा अवश्य चालू हुई, कहीं ना कहीं से इसका रूट सहजिया मार्ग के अंदर है, जो कि राधा रानी और कृष्ण के तत्व को थोड़ा जो है कह सकते हैं सस्ता ले लेते हैं कुल मिला करके। हम ये तो नहीं कहेंगे सहजिया एकदम से, लेकिन उस प्रकार के जो मूल्य हैं उसकी जो वास्तविक गरिमा है वह थोड़ी कम हो जाती है, राइट। तो इसीलिए जो है, और इनफैक्ट हमारा मंदिर तो बहुत विशेष है, हम चरण दर्शन भी करते थे और उसका कैलेंडर प्रिंट करते थे, राइट। वी वर सो स्पेशल लाइक दैट, यू नो, सो देयरफॉर इग्नोरेंस नॉट एन एक्सक्यूज। सो आई आज रुक्मिणी कृष्ण प्रभु यस्टरडे, उन्हीं को वास्तविकता में क्लास देना था लेकिन वह यमुनानगर के अंदर है। देयरफॉर मैं व्यासासन को यूज करके इस बात को कह रहा हूँ कि राधा रानी के चरण चाहे चित्र के अंदर हों चाहे मूर्ति के रूप में हों, पब्लिक व्यू के अंदर नहीं होने चाहिए वास्तविकता के अंदर। तो क्योंकि राधा राधिकारमण मंदिर से हमने पास्ट में ये कार्य किया है तो उसको रिपेयर करना भी जरूरी है और सही सिद्धांत स्थापित करना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हमने ना मंगल आरती में और ना दर्शन के अंदर पिछले साल से राधा के चरण दर्शन नहीं कराए हैं लाइक दैट। और ये JBCDT मिनिस्ट्री का भी आदेश है। लोग बोलते हैं ये मंदिर में दिखाए वो मंदिर में दिखाए, लेकिन DT मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स है, प्रत्येक वर्ष मंदिर जो चरण दर्शन कर रहे हैं कम होते जा रहे हैं। इनफैक्ट राधाष्टमी पे तो कोई लीला भी नहीं है राधा रानी के चरण दर्शन की, गोपाष्टमी पे तो चरण दर्शन किया जाता समझ में आता है क्योंकि कृष्ण जिन गोपाल बने थे गायों को चराने गए थे, सो राधा रानी और सब सखियां ब्रज के अंदर भाग करके उनका दर्शन ऐसे करने के लिए गई जब बाहर, तो दर्शन करने जब भागना होता है तो स्त्रियों को थोड़ा अपना क्या बोलते हैं जो घाघरा रहता है लोअर गारमेंट है थोड़ा उठा करके भागते, तो राधा रानी के चरण दर्शन वहां पे किसी को होते हैं। तो वहां पे एक लीला तो हुई थी लेकिन राधाष्टमी पे तो कोई लीला का भी प्रसंग नहीं है। अब जो भक्त इसके सपोर्ट में कहते हैं कि राधा रानी के चरण दर्शन करने चाहिए, एकमात्र एक एविडेंस है जहां पे इस्कॉन के अंदर श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन किए गए, वह है राधा दामोदर बस पार्टी, जो कि तमाल कृष्ण महाराज और विष्णुजन स्वामी ये दोनों लीड किया करते थे। और विष्णुजन स्वामी राधा दामोदर की पूजा किया करते थे, बहुत ही सुंदर विग्रह थे और उनको इतना जानकारी था, बहुत सुंदर श्रृंगार करते थे, बहुत सुंदर उनको भोग लगाया करते थे बस के अंदर ही, सब ब्रह्मचारी लोग बस में ही रहते थे और कोई आश्रम नहीं था उनके लिए, और वो बस चलता फिरता मंदिर था, राधा दामोदर के विग्रह थे इसलिए उसका नाम था राधा दामोदर बस पार्टी। और रात को कहीं रुकते थे, सुबह उनका मंगल आरती होता था, सब लोग जपा करते थे, एक पुजारी ड्रेसिंग करता था, भगवान को भोग लगाता था, श्रृंगार करता था, इधर एक व्यक्ति भोग बनाता था, फिर सबक प्रसाद पाते थे और फिर संकीर्तन के अंदर। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी जब उस संकीर्तन वैन में राधा दामोदर के दर्शन करने आए तो विष्णुजन स्वामी ने जो है उनके ऐसा राधा रानी का जो घाघरा था या स्कर्ट था वो थोड़ा चरण दर्शन कराए हुए थे। तो प्रभुपाद से उन्होंने पूछा, प्रभुपाद आए, प्रभुपाद ने बहुत राधा दामोदर के सौंदर्य की, उनके श्रृंगार की बहुत सुंदर तारीफ की, कितने सुंदर विग्रह हैं। तो विष्णुजन स्वामी ने पूछा कि प्रभुपाद वी शुड नॉट बी शोइंग राधा रानी स्वीट, है ना, यस। तो प्रभुपाद सेट डोंट यू लाइक टू सी राधा रानी स्वीट। प्रभुपाद ने उनसे पूछा क्या आपको राधा रानी के चरण कमल देखने अच्छा नहीं लगता है। तो विष्णुजन स्वामी, प्रभुपाद ने बड़े प्रेम से और आत्मीयता के साथ जब इस बात को बोला तो उनको थोड़ा समझा नहीं, तो प्रभुपाद ने कहा राधा दामोदर दिस विग्रह राधा रानी स्वीट कैन बी शोन, वाई, बिकॉज द एज ऑफ राधा दामोदर इज 5 or 6 years, दे आर टेंडर चाइल्ड, दे आर नॉट ग्रोन अप यूथ, वो किशोर नहीं है, तो उनके चरण दर्शन आप दिखा सकते हो। पूरे इस्कॉन के अंदर एकमात्र वह एक एविडेंस है जहां राधा रानी के चरण दर्शन दिखाए गए लेकिन ज्यादा पब्लिक में नहीं। और आज वो विग्रह मंदिर जिस मंदिर में स्थापित हैं, वो मंदिर है गीता नागरी के अंदर जो हमारा फार्म है, तो उसके बाद से जब वो राधा दामोदर बस पार्टी से क्या बोलते हैं विग्रह हटाए गए तो उसके बाद से राधा रानी के चरण दर्शन वहां भी कभी नहीं दिखाए गए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से जो है हम लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन अब हम क्या हम हरे आवाज ठीक है क्या हम राधा कृष्ण की पूजा करने के कभी काबिल बनेंगे नहीं बनेंगे क्या हमें लालसा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए कितने लोग कहते करनी चाहिए अच्छा अभी कई लोगों का हाथ नहीं खड़ा है नहीं वही हमारा गंतव्य है वास्तविकता के अंदर मोर ए अभिलाष विलास कुंजे दियो वास नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशि जेतो मार शरण लय तार वंछा पूर्ण है कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी राइट सेवा अधिकार दिए करो निज दासी है ना तो अब हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए हमारी औकात देखिए प्रार्थना करने चले निकुंज के अंदर भगवान आप जो है हमें अपनी दासी बनाइए नहीं ये श्री चैतन्य महाप्रभु का हमको यही विशेष उपहार है हमारे औकात नहीं होगी योग्यता नहीं होगी लेकिन हमारे आचार्यों का विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु का ये उपहार है जो राधा रानी के भाव के अंदर आए हैं इसीलिए आप देखिए जब हम भक्ति करते हैं अभी हम कौन सी भक्ति करने का पालन कर रहे हैं वैधि साधना भक्ति जो रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग की जाती है लेकिन इसका गंतव्य क्या है ताकि शुद्ध हो सके आचार्यों के द्वारा दिए गए इस माध्यम को और क्या पालन कर सके रागानुगा भक्ति को और रागानुगा भक्ति क्या होती है किसी रागात्मिका भक्त के अनुगत्य में रहकर किया गया श्रवण कीर्तन जो कि रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुगामी जनानुरागी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम कि किसी ब्रजवासी के अंतर्गत में रहकर तो जो ब्रजवासी है वो क्या है रागात्मिका भक्त है और जो उनके अनुगत्य में रहता है उसे क्या बोला जाता है रागानुगा भक्त यह साइंस भक्ति सामर्थ्य से हम सबको समझना चाहिए तो जो ब्रजवासी है भगवान के नित्य परिकर है इंटरनल एसोसिएट्स है वो कौन है रागात्मिका भक्त यशोदा नंद बाबा राधा रानी ललिता विशाखा भद्रसेन वृषभ मधुमंगल ये सब भगवान के रागात्मिका भक्त हैं तो हम रागात्मिका भक्त तो नहीं बन सकते लेकिन उनके पद चिन्हों को पालन करके राग मार्ग को पालन कर सकते मतलब हमारा कर नहीं सकते ऑफकोर्स लेकिन ये हमें ये चैतन्य महाप्रभु राग मार्ग को देने के लिए आए थे तो इस राग मार्ग को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप देखिए जो सबसे बड़े रागात्मिका भक्त गोलोक वृंदावन में कौन है जिनका प्राकट्य दिवस है श्रीमती राधा रानी और वो जब भौतिक वृंदावन में राधा रानी के भाव में कौन सबसे बड़ा रागानुगा भक्त आया है श्री चैतन्य महाप्रभु राइट ही इज द मूड ऑफ अ डिवोटी ही इज द टॉप मोस्ट रागानुगा भक्त श्रीमती राधा रानी की रागात्मिका सबसे बड़ी सेविका कौन है मंजरी कौन है बड़ा आपका जनरल नॉलेज बड़ा वीक है श्री रूप मंजरी और वो किस रूप में आई है किस रागानुगा भक्त के रूप में रूप गोस्वामी के रूप में और ये दोनों महानुभाव चैतन्य महापौर रूप गोस्वामी हमारे लिए क्या ग्रंथ लिख के जा रहे भक्ति रसामृत सिंधु जिसके अंदर वैदिक साधना भक्ति दी गई है इसलिए हमारा प्रेम उन आचार्यों को तब दिखलाया दिया जाएगा जब हम उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पूर्णतया फॉलो करेंगे क्योंकि राग मार्ग में तो अपराध की कोई बात ही नहीं हो सकती वो इतने उन्नत होते हैं केवल वैदिक साधना भक्ति के ही जो 64 अपराध लिख दिए रूप गोस्वामी ने वो इसलिए तो लिखे क्योंकि वैदिक साधना भक्ति में अपराध है क्योंकि हम शुद्ध नहीं है इसीलिए वो अपराधों की चर्चा की गई है इसीलिए वैदिक साधना भक्ति के प्रोसेस की चर्चा की गई है उसको जब हम पालन करें लेकिन किस भावना से पालन करें कि एक बार हमें भगवान श्री राधा और कृष्ण की उपासना करनी है उसको हम कैसे कर सकते हैं क्या है चैतन्य महाप्रभु का प्रोसेस वो राधे राधे नहीं गा रहे थे वो क्या गा रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वह संकीर्तन रस वह भगवान का नाम देख करके गए और आप राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं या कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं ये बताइए कितने लोग कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं कितने लोग राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राधा रानी कैसे प्रसन्न होती हैं जब कृष्ण की सेवा करते हैं आप इसे लोग पूछते हैं आप राधे राधे क्यों नहीं जप करते हम इसलिए नहीं करते क्योंकि जो राधा रानी जप करती हैं जिसको वो जब हम करते हैं हम राधा रानी के अनुयायी क्योंकि राधा रानी कृष्ण का नाम जप करती हैं और चैतन्य महाप्रभु के रूप में रागानुगा भक्त के रूप में आए तो क्या जप कर रहे हैं वो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इसीलिए हम जो हैं राधे राधे कौन जप करता है कृष्ण जप करते हैं राधे राधे तो कृष्ण जप करते हैं राधा रानी नहीं जप राधा थोड़ी जप करती हैं तो राधा रानी के वास्तु के अनुयायी भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं, और जो गौड़िया वैष्णव है वो चैतन्य महाप्रभु जो कि टॉप मोस्ट रागानुगा भक्त हैं उनके अंतर्गत रह के हम उनसे बड़े नहीं हो गए, हम प्रभुपाद से बड़े नहीं हो गए। प्रभुपाद से किसने पूछा, प्रभुपाद राधा कृष्ण लीला सुनाइए, प्रभुपाद सेड यू मे बी क्वालिफाइड टू हियर, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक। प्रभुपाद ने वो आप योग्य हो सकते सुनने के लिए, कि मैं योग्य नहीं हूँ बताने के लिए। प्रभुपाद द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सनैलिटी, लेकिन फिर भी इसीलिए राधा अष्टमी के दिन हमारा जो राधा रानी को असली फॉलो करने का जो वो क्या कह सकते हैं तरीका है वो है चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों को फॉलो करें। यही प्रभुपाद अपने हर की वी शुड वर्शिप राधा एंड कृष्णा फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु थ्रू द प्रोसेस ऑफ गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु, राइट। वी शुड फॉलो इन द मूड फुटस्टेप्स ऑफ गोपीज, सॉरी वी शुड हैव द मूड ऑफ गोपीज बट फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द सिक्स गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, जो कभी नहीं कहते कि मेरे पास कृष्ण है मेरे पास राधा है। वो ये नहीं कह रहे रात शाम सपने में आए, ऐसा नहीं। वो कह रहे हे राधे व्रज देवी केच ललिते हे नंद सुनो कुतः श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्ये कुतः, कि हे राधे हे व्रज देवी के हे ललिता हे कृष्ण हे नंद पुत्र महाराज के पुत्र आप कहाँ पर हैं कहाँ पर हैं। जो है इसीलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र ये भगवान को पुकार है, और विशेषकर श्रीमती राधा रानी को पुकार है कि हे श्रीमती राधा रानी आप मुझे अपने कृष्ण की सेवा में लगाइए, क्योंकि क्यों क्योंकि वो माता हैं। करुणाम करुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णिता चरिते। तो श्रीमती राधा रानी द मोस्ट कंपैशनेट, जहां से महाराज ने चालू किया था, राइट, शी इज मोस्ट मर्सीफुल देन कृष्णा। तो इसीलिए हम उनके चरणों के शरण ग्रहण करते हैं, और वही भाव से चैतन्य महाप्रभु का है, और उसको अंगीकार करने का द बेस्ट प्रोसेस क्या है, प्रत्येक दिन हम श्री श्री राधा और कृष्ण का संग कर सकते हैं। कैसे, अपने 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करने के द्वारा, राइट। तो दैट इज व्हाट आवर टॉप मोस्ट गिफ्ट टू श्रीमती राधा रानी कैन बी, कि जब वो चैतन्य महाप्रभु उनके भाव में आए और उन्होंने हमें क्या दिया, ये हरे कृष्ण महामंत्र, इसको हम स्वीकार कर लेंगे तो ये राधा रानी इससे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। एंड दैट विल योर बेस्ट गिफ्ट टू श्रीमती राधा रानी, एंड दैट विल मेक अस मोस्ट क्वालिफाइड टू गो टू श्री वृंदावन। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन कबे हम हे रावो श्री वृंदावन। ये आजकल एक्सप्रेस वे पकड़ने से हम वृंदावन जा तो सकते हैं लेकिन प्रवेश नहीं कर सकते, राइट। प्रवेश हम तभी कर सकते हैं जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, विषयों से मुक्त होगा। तो हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। जय श्री राधे। आप सब फास्टिंग किया लग रहा है तो थोड़ा जोर से बोलिए जय जय श्री राधे। तो अभी अभिषेक चालू होगा। करुणा चंद्र की आप सबसे रिक्वेस्ट है राधा रानी के लिए, उनके द्वारा दिए गए गिफ्ट के अलावा एक और गिफ्ट दे सकते हैं आप। अंतिम दिन है इनके द्वारा लॉन्च की गई स्कीम, आप सब इसके अंदर पूर्णतया भाग लीजिए। रोहिणी मंदिर निर्माण योजना के अंदर इसमें गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं आप अपने बच्चों को अपने पूर्वजों अपने आने वाली संतानों को बोलेंगे पीढ़ियों को देखो ये वो मंदिर है जिसको बनाने में हमने योगदान दिया था, राइट। तो विशेष सेवा है, एक साल के अंदर सब भक्त चाहते हैं मंदिर समाप्त हो। बहुत लंबे समय से बन रहा है, 10 साल हो गया मंदिर बनते बनते है, तो भक्त लोग थक गए हैं, कह रहे नया मंदिर बनाएंगे, एक ही मंदिर बनाइए। तो आप लोग उससे थक गए होंगे योगदान देते देते, तो अंतिम अपने चेकबुक निकालिए सब और आज ही साइन करके करुणा चंद्र को दे दीजिए, अमाउंट मैं भर दूंगा, ठीक है ना। करुणा चंद्र कह रहे हैं कि वो राधा रानी का विशेष आभूषण उन्हें गिफ्ट देंगे यदि आज कोई भाग लेगा तो, ठीक है ना, अमाउंट मैं भरूंगा, राइट। हरे कृष्णा। तो आप कृपा करके इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, हमारे वरिष्ठ भक्तों की एंग्जाइटी है कि मंदिर जल्दी समाप्त हो, तो आप सब उसमें सहयोग कीजिए। हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधा राधिका भगवान की। तो अभी राधिका रमन को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तुरंत ही अभिषेक चालू कर देंगे। हरे कृष्णा। अभिषेक के दौरान हमारे बीच में कीर्तन करने के लिए कौन आए हुए वृंदावन से, श्यामानंद प्रभु। आप सब राधा और कृष्ण का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन कैसे, वहां तो केवल कुछ गिने चुने पुजारी होंगे, यहाँ पे आप कर सकते हैं किसके द्वारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने बहुत बार देखा है स्टेज से भक्त लोग कीर्तन नहीं कर रहे होते, तो आज निवेदन है राधा रानी को प्रसन्न करना है, तो जितना भी घंटा सवा घंटा भी है चलेगा, आप सब बहुत उत्साह पूर्वक उनका कीर्तन कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न हो यदि मैंने कंफ्यूज कर दिया हो तो आप अलग से पूछ लीजिएगा मेरे से, समय था प्रश्नोत्तर के लिए। हरे कृष्ण।
Mm-hmm.